ये वृत्तांत थियोडोर दोस्तोयेवस्की ने बाद में अपनी एक बहुत प्रसिद्ध किताब द इडियट में किसी एक पात्र के जीवन में होता हुआ दिखाया है और उसमें लिखा है कि जब मृत्यु सामने थी और अभी मरने ही वाला था तो कौन से विचार मन में चल रहे थे. How precious the life is, and how many moments of this precious life I have wasted in errors, in acts of shame, in mistakes, in futilities. Jeevan ka pratyek kshan kitna anmol hai. और जबकि मृत्यु कभी भी आ सकती है, उस समय मुझे अचानक पूरा जीवन दिखाई देने लगा, अपना ही जीवन. एंड नॉट अ सिंगल मैन इज देयर ऑन दिस अर्थ, ही राइट्स, हु इज फ्री फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ शेम एंड गिल्ट. एवरी मोमेंट is a gift. Every moment is a miracle. Every moment is happiness. Every second is an eternity of happiness. ये वृत्तांत उसने लिखा है. ये जीवन कितना अनमोल है. यदि हम अपने जीवन को देखें पीछे मुड़कर, हमने क्या किया, हमने क्या पाया. हिंदी में एक बहुत सुंदर शब्द है, सिंहावलोकन. शेर होता है ना, पीछे मुड़ता है ऐसे. रेट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, स्वयं को स्वयं देखना. मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं. सबने एक पात्र के बारे में सुना होगा, शिल्डन. एक सीरियल आता था, द बिग बैंग थियरी. उसमें एक छोटा सा 10 साल का लड़का है जिसका नाम है शिल्डन. वो इतना शार्प है, इतना शार्प है, बहुत हाई लेवल की आईक्यू है उसकी. वो हर चीज में प्रश्न उठाता है. ही डजंट बिलीव इन रिलीजन, ही बिलीव्स ओनली इन साइंस, द फैक्ट्स. स्कूल में जाता है, पहले ही दिन सारे टीचर्स परेशान, क्योंकि उसके प्रश्न इतनी हाई लेवल के हैं कि स्कूल बहुत छोटा है उसके लिए. वो 10 ही साल का है. आप देख सकते हैं द बिग बैंग थियरी, शिल्डन. छोटी छोटी क्लिप्स है बहुत सारी, और बहुत फेमस पात्र है. और मेडिकल फील्ड में तो इसको कई बार कोट किया जाता है. उसमें एक सीन है, अचानक वो शेल्डन फोन लगाता है. कहां फोन लगाता है, उसका जन्म हुआ है एक बैप्टिस्ट फैमिली में, क्रिश्चियन फैमिली में. वो फोन लगाता है जो यहूदी धर्म के टीचर्स होते हैं, रबाई जिनको कहते हैं, और कहता है, यस दिस इज शेल्डन एंड आई वांट टू टॉक विथ यू. वो बूढ़ा व्यक्ति उधर से बोलता है, यस शेल्डन, व्हाट यू वांट टू नो. शेल्डन कहता है, आई वांट टू चेंज माय रिलीजन. वो कहता है, व्हाई. वो कहता है, बिकॉज आई हैव सीन दैट ऑल द ग्रेट साइंटिस्ट हैव बीन ज्यूइश, सो आई वांट टू बिकम ज्यू. उधर से वो कहता है, बट देर आर पीपल फ्रॉम अदर रिलीजन हू हैव बिकम साइंटिस्ट. और शेल्डन कहता है, नो, बट वॉट एवर आई हैव रेड, आई फील दैट आई शुड बिकम ज्यूइश. वो पादरी, पादरी कहो या रबाई, पूछता है, हैव यू रेड बाइबल. वो कहता है, यस, कवर टू कवर, यू कैन क्विज मी. और रबाई कहता है, नो, आई बिलीव यू. फिर से पूछता है व्हाई यू वांट टू बिकम ज्यूश. वो कहता है आई वांट टू बिकम ग्रेट साइंटिस्ट लाइक अल्बर्ट आइंस्टाइन. तब वो रबा एक वाक्य कहता है, जब तुम्हारा अंतिम समय होगा तब तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम अल्बर्ट आइंस्टाइन क्यों नहीं बने, तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम शेल्डन क्यों नहीं बने. तुम जो हो जैसे हो क्या तुम वैसे बने? यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू बिकम समथिंग एल्स विच यू आर नॉट. जो तुम्हारे पेरेंट्स ने और समाज ने कहा इसके जैसा बनो उसके जैसा बनो, बट डिड यू एवर बिकम व्हाट यू शुड हैव बिकम? तो सबसे मुख्य प्रश्न है, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्यों हूं, मैं किस लिए हूं और मैं क्या कर रहा हूं. हमारी ओपीडी में एक पेशेंट आता था, वो बैंक में थे इधर ही माउंट में. उनके पास 6 या 7 मोबाइल रहते थे, एक इधर एक इधर, एक जेब में, एक हाथ में, एक दूसरे हाथ में. वो जब भी मिलते थे विद ऑल दोज मोबाइल्स आई यूज्ड टू सी हिम. आई यूज्ड टू आस्क कि इतने सारे मोबाइल? वो कहते थे हाँ मुझे बहुत काम रहता है. और एक दिन वही व्यक्ति कैजुअल्टी में लाया गया, स्ट्रेचर पर ब्रॉड डेड. कोई हार्ट अटैक आ गया होगा, घर पे ही शरीर छोड़ दिया. हम खड़े थे वहां पर और देख रहे थे उसको, उस डेड बॉडी को, और सोच रहे थे कहां है वो मोबाइल, कहां है उसके कॉन्टैक्ट्स. जो कहता था कि मैं बहुत बिजी रहता हूं. One stroke of death and you are gone. कोई ये नहीं पूछेगा तुम्हारे पास क्या डिग्री है, तुम किस पथ पर हो. पर एक चीज जो रह जाती है वो एक ही है, तुमने कितनों को सुख दिया. जीवन बहुत अनमोल है और आप सब बहुत भाग्यशाली है जो इस पावन भूमि पर आए. एक फिल्म मेकर लिखता है, जब भी मुझे नई फिल्म बनानी होती है मैं दूसरे शहरों में चला जाता हूं. क्यों? क्योंकि वहां दूसरा टाइम जोन होता है, सब कुछ अलग होता है. वहां जाकर मैं अच्छे से सोच सकता हूं. तो आप सब भी किसी और जगह से इस जगह पर आए हो, किसी और जोनल एरिया से, किसी और एरिया में आए हो. यहां बैठकर 2 काम करने हैं. पहला, अब तक का जो जीवन है उसमें क्या किया, साक्षी होकर, डिटैच्ड ऑब्जर्वर होकर अपने ही जीवन को देखना, बचपन से लेकर अब तक. जैसे कोई स्क्रीन है उस पर दिख रहा है सब कुछ, जस्ट साक्षी होकर देख रहा हूं क्या है, कौन भाई किसका भाई, कौन पति किसका पति, बेटा बेटी, ये सब जैसे स्ट्रेंजर्स है और मैं उनको देख रहा हूं. पहला काम. और दूसरा काम, यहां रहकर वहां जाके क्या करना है इसकी थोड़ी सी प्लानिंग करनी है. क्या चेंज लाना है दिनचर्या में, उठने के समय में, वॉक में, रिलेशनशिप्स में, लाइफस्टाइल में, हैबिट्स में, एडिक्शंस में, सब चीजों में करना क्या है, या जैसा चल रहा है वैसे ही चालू रखना है. जैसे एक बॉल होता है उसको फेंक दिया जाए सीढ़ियों पर, वो नीचे ही जाएगा, अनलेस एंड अंटिल यू स्टॉप इट. इन द सिमिलर मैनर माइंड का भी एक पैटर्न बन गया है, उठने का, बोलने का, कुछ करने का एक पैटर्न है, बस उस पर वो चला जा रहा है। अंदर से मन कहता है कि ये नहीं करना चाहिए, फिर भी मन करता है, शरीर करता है। और एक गिल्ट कॉन्शियसनेस के साथ जीवन चलता है। मनुष्य को बुद्ध और महावीर धर्म, महावीर ने एक शब्द प्रयोग किया था, बहुचित्तवान मैन इज अ पॉलीसाइकिक एंटिटी। वो एक नहीं है, जो सुबह है वो दोपहर को नहीं है, जो दोपहर को है वो शाम को नहीं है, जो शाम को है वो रात को नहीं है, रात को कुछ और ही है, शाम को कुछ और है, बदलता है बदलता है बदलता है। अभी अभी बहुत ऊंचे विचार आते हैं, ऐसा लगता है सब कुछ कर दूं किसी के लिए, और फिर दूसरे ही क्षण नेगेटिव थॉट्स चेंज होते रहते। इट इज सो कॉम्प्लेक्स, सो कॉम्प्लिकेटेड। और उसमें कितनी सारी चीजें हमें प्रभावित करती है, मौसम, बारिश, परिस्थितियां, व्यक्ति, ट्रैफिक, पोल्यूशन, वर्क प्लेस, वर्क एनवायरमेंट, रिलेशनशिप्स, इंटरैक्शंस, बॉडी की बीमारियां, सो मेनी थिंग्स, ये सब हमें प्रभावित करती है। मन बदलता जाता है बदलता जाता है बदलता जाता है, पता ही नहीं चलता है ये हो क्या रहा है, और आई एम लॉस्ट। एक अमेरिकन एक्टर ने लिखा है, मैंने अपने पूरे जीवन काल में इतने सारे पार्ट प्ले किए हैं, कभी मैं इंस्पेक्टर हूं, कभी मैं हीरो हूं, कभी मैं चोर हूं, कभी, नाउ आई फील वेयर आई एम एंड व्हाट आई एम एग्जैक्टली, आई एम लॉस्ट। मुझे कई बार अभी समझ नहीं आ रहा है मैं हूं कौन इनमें से। तो यहां आने का एक पर्पज है आत्मचिंतन, स्वचिंतन। दूसरों के बारे में बहुत सोच लिया, परिवार के बारे में बहुत सोच लिया, स्वयं के बारे में, मैं कहां हूं, अब तक क्या किया और आगे क्या करना है, बस यही प्रश्न है। बहुत सारी चीजें गलत गलत चल रही है, क्या किया जाए, कैसे रोका जाए उन्हें। जबरदस्ती करेंगे तो सेपरेशन होगा, जो चीज छोड़नी है वो व्यर्थ हो जाए तो अपने आप छूट जाती है। का प्रभाव हम पर बहुत ज्यादा है, हम जो अभी है इट इज द रिजल्ट ऑफ द पास्ट, और वो हमें पकड़े हुए है, और उसकी पकड़ इतनी ज्यादा है कि हम वर्तमान जी नहीं पा रहे हैं। फ्यूचर तो पता ही नहीं क्या है, पर वर्तमान हाथ से निकला जा रहा है, या तो अतीत में जी रहे या तो भविष्य में जी रहे। भविष्य की चिंता है, भविष्य एक इमेजिनेशन है, फ्यूचर इज एन इमेजिनेशन, पास्ट इज अ मेमोरी, बट उसमें फंसे हुए क्या करे कि जिससे हम इस पल में जिए। तो आज के सत्र में ऐसी हम 21 पॉइंट्स देखेंगे, 21 पॉइंट्स that will free us from the effect of past, that will free us from the futile ruminations of the future and make us stabilized in the present moment. सबसे पहला, हर एक के जीवन में बहुत सारी बातें हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, और कुछ कुछ बातों का बहुत गहरा प्रभाव है, और कुछ कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं कि जिसको हम भूल ही नहीं पाते, दे आर सो डीप। जैसे हमारे ओपीडी में एक पेशेंट आती है, आपको पता होगा माउंट आबू में सीआरपीएफ आर्मी, ये स्टेशन है इनके, इनके कैंप्स है, इनके ऑफिसेस है, आर्मी सीआरपीएफ। एक जवान है आर्मी में, उसकी माताजी आती है, तो वो जब पहले आती थी तो बहुत ज्यादा दुखी थी, अभी तो काफी स्टेबल है। वो लोग पहले कश्मीर में रहते थे, तो उसके आंखों के सामने उसके पति को मार दिया था। आफ्टर दैट वो बच्चा छोटा था, देन वो बड़ा हुआ, फिर उसको इधर सीआरपीएफ में ही केम हियर, बट शी इज नॉट फ्री। हर रात उसको दिखता है वो सब सीन, इतना पेनफुल है, इतना दर्दनाक है वो, कि वो उससे निकल ही नहीं पाई, जबकि अभी इतने साल हो गए उसको, 10-15-20 साल, बट शी इज नॉट फ्री फ्रॉम इट। यहां पर कुछ काउंसलिंग सेशंस चले तो अभी काफी स्टेबल है। तो हर एक के जीवन में बहुत सी घटनाएं होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये होती रहेगी। तो द फर्स्ट पॉइंट इज एक्सेप्ट द पास्ट। क्या करना है, जो कुछ मेरे जीवन में अब तक हुआ, किसी से हम बहुत ज्यादा प्यार करते थे, हम नहीं चाहते थे कि वो जाए, पर उसकी या तो मृत्यु हो गई या वो छोड़ के चला गया, कोई दोस्त, कोई भी हो सकता है, वो हम चाहते ही नहीं थे कि वो जाए, या कोई धोखा दिया किसी ने, या जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया, he deceived us, we don't forget। तो आप जब तक इस वातावरण में हैं, यहां और यहां से जाने के बाद, सबसे पहला अभ्यास है एक्सेप्ट द पास्ट। पहले एक बार देखना उसको, ये सब कुछ हुआ है। यहां आप अमृत वेला मेडिटेशन में उठ रहे हैं, तो उस मेडिटेशन में ये भी एक मेडिटेशन है, सीइंग विजुअलाइजिंग द पास्ट। एक स्क्रीन देखो, यहां जन्म हुआ, फिर बड़े हुए, फिर स्कूल, स्कूल लाइफ, फिर आगे कॉलेज, मैरिज, चिल्ड्रन, फैमिली लाइफ, वर्क लाइफ, जॉब, और अभी यहां। जस्ट सी दैट, बहुत से डरावने सीन्स हैं, पर अगर उसको बार बार देखा जाए साक्षी होकर, एज अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर, देन उसका प्रभाव हम पर इतना नहीं होता। नहीं तो दिन में अगर कोई घटना याद आ जाए, अचानक आंसू आ जाते ऑटोमेटिकली, क्योंकि यू हैव सडनली आ गया वो पिक्चर। हमारा माइंड है, एक है कॉन्शियस माइंड और उसके नीचे एक सबकॉन्शियस है, बहुत गहरा है, अंधकार है उसमें। यू एंटर विद अ स्मॉल टॉर्च इन योर हैंड, बस वो जहां पर फ्लैश किया उतना ही दिखता है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है जहां दर्द है, जहां पीड़ा है, अनहीलिंग वुंड्स, अनहील्ड वुंड्स ऑफ द हार्ट, वो कभी भी बाहर आ जाते हैं, दे नॉक अस डाउन एंड वी फॉल डाउन, गिरा के चले जाते हैं। परंतु जैसे कोई बहुत डरावनी मूवी है तो उसको देखते तो है ना, ऐसे ऐसे देखते हैं, दे फील लाइक दिस। जीवन भी एक मूवी की तरह है, जो कुछ हो गया हम अभी याद कर ले कि 100 लोगों के सामने किसी ने मेरा अपमान कर दिया था, अभी भी क्रोध, जोश, श्वास की स्पीड बढ़ जाती है। वो स्मृति आते ही, जैसी स्मृति वैसी स्थिति तुरंत बन जाती है, क्योंकि हमने अचानक देखा उसको। यदि हम रोज देखेंगे एक बार सारे जीवन के सारे सीन्स, जस्ट एक बर्ड आई व्यू ऊपर से देख के, देन कम बैक अगेन टू मेडिटेशन। मेडिटेशन कर रहे हैं उसके बीच में देखना, और फिर अगेन बैक टू मेडिटेशन। ये जो बीच का पीरियड है एक बार देख लेना इसको, और स्वीकार करना, एक्सेप्ट द पास्ट। जो कुछ हुआ है मैं उसे स्वीकार करता हूं, जिसे जाना था वो गया, उसे मैं रोक नहीं सकता, हमारा जीवन जैसे एक बहन है, हमारी ब्रह्मा कुमारी इसमें ही एक बहन है, उसका एक बार फोन आया और वो कहती है कि मेरे पिताजी एडमिट हुए कोविड में, फिर माताजी भी एडमिट हुए और दोनों ने शरीर छोड़ दिया। इट वॉज हाईली अनएक्सपेक्टेड। हाउ टू टैकल दिस? ज्ञान तो बहुत है बट इट इज स्टिल अ टफ सिचुएशन। इट वॉज हाईली अनएक्सपेक्टेड। और जीवन में बहुत सारे सीन्स ऐसे आएंगे जो हम चाहते नहीं है कि हो पर होते हैं। जस्ट रिमेम्बर, हम एक ट्रेन में बैठे हैं, जब जिसका स्टेशन आ गया वो उतर जाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि तुम मेरे साथ मुंबई तक चलो, उसको अहमदाबाद उतरना ही है क्योंकि उसका घर वहां है। आपने यहां पर कुछ दिनों में थोड़ी सी चीजें शरीर से परे जो चेतना है उसकी सुनी होगी, आत्मा जो इधर से उधर इधर से उधर जहां उसका अकाउंट्स है वहां चली जाती है। इस शरीर का अकाउंट पूरा हुआ, इट हैज गॉन टू न्यू बॉडी। ब्रह्मा कुमारी इसमें ही एक बहन थी, कन्या थी, बहुत शार्प थी और बहुत इंटेलिजेंट थी और बहुत गुणवान, छोटी कन्या थी, अहमदाबाद सेंटर बहुत पहले कभी। अचानक वो जा रही थी ट्रेन के नीचे, शी जस्ट डाइड। तो यहां पर ट्रांस मैसेंजर्स है, दे गो इन ट्रांस एंड ब्रिंग द मैसेजेस फ्रॉम द अदर वर्ल्ड। सो जो उसके लिए मैसेज आया था वो ये था, ये पूछा गया कि बाबा व्हाई, व्हाट सिन दैट गर्ल हैज कमिटेड दैट शी डाइड सडनली इन अ सेकेंड। सो द मैसेज वॉज, गॉड सो लव्स दैट चाइल्ड कि ही वॉन्ट्स टू फिनिश ऑल अवर अकाउंट्स इन वन सेकेंड। उसके जीवन के जो कुछ पुराने अकाउंट्स थे वो इस तरह के थे कि एंड ही लव्ड हर कि वो एक सेकंड में पूरे हो गए। अब उसका नया जीवन चालू हो गया। हम केवल एक दृष्टि से देखते हैं, इसको हमने इतना प्यार किया वो क्यों चला गया, क्योंकि अब उसकी यात्रा कहीं और चालू हो गई है। डू यू हैव टू एक्सेप्ट दैट? एक्सेप्ट द फर्स्ट पॉइंट, एक्सेप्ट सेकेंड पॉइंट, टेक अ ब्रेक। आप बहुत व्यस्त हैं सभी अपने अपने कार्यक्षेत्रों में, बीच बीच में टेक ब्रेक। जैसे ये ब्रेक है ना वैसे ही, इस बार तो आपको यहां आने का अवसर मिला, पर हमेशा ही यहां आने का अवसर मिलेगा शायद ऐसा ना हो। जहां आप रहते वहीं पर ही टेक अ ब्रेक इन बिटवीन, दो दिन का या हफ्ते में एक बार, एवरी सैटरडे संडे, कहीं दूसरी जगह या जहां है वहीं पर कुछ घंटों के लिए एकांत। सीक साइलेंस सॉलिट्यूड फॉर सम टाइम। सो ये जो ब्रेक है ना, दिस विल रिचार्ज अस। यहां आके आपने एक अनुभव किया होगा सभी ने, यहां कितना दिन हो गया आपको? तीन दिन। तो आपने एक अनुभव किया होगा कि यहां कुछ है ऐसी एक शक्ति कि जिसने जो एक स्ट्रेस था, टेंशन, उसको खींच लिया है। जरूरी नहीं कि यहां जो भाषण हुए, लेक्चर्स हुए, उसमें आपको बहुत कुछ अच्छा अच्छा मिला, चाहे मिला या ना मिला, बट यहां आते ही इन दिस एटमोस्फियर देयर इज सम इनविजिबल फोर्स कि जिसने वो स्ट्रेस को सक्शन मशीन होती है ऐसे खींच लिया है, सक कर लिया है। क्यों क्यों ऐसा क्या है? यहां पर इधर बहुत स्ट्रांग वाइब्रेशंस है, कंटिन्यूअस मेडिटेशन चल रहा है, कंटिन्यूअस ग्रुप्स आ रहे हैं, कंटिन्यूअस लोग, अगर आप कहीं पर भी जाओ सुबह 3 बजे से सेवा 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 सेवा। जैसे संसार में किसी एयरपोर्ट में या किसी रेलवे स्टेशन पर खड़े हो, वहां के किस तरह के वाइब्रेशंस होते हैं? वेरी स्ट्रांग नेगेटिव वाइब्रेशंस, दे ब्रिंग डाउन योर एनर्जी, योर वाइब्रेशंस। यहां पे यू ऑल आर इन हाई वाइब्रेशंस एटमॉस्फियर। तो जरूरी नहीं है कि यहां ही, यहां आते रहना जब जब अवसर मिले, पर वहां पर भी अगर सेवा केंद्र है वहां जाओ, किसी एकांत स्थान पर जाओ, कोई ऐसी जगह जाओ जो स्पिरिचुअल हो। दे चार्ज द सोल। तो सेकंड पॉइंट, टेक ब्रेक। ये जो ब्रेक है ना, ये हमें अतीत की यादों से मुक्त करता है, जो हमारी होल्ड है, पकड़ है, जो उसका प्रभाव है, उससे मुक्त करता है। नहीं तो दिन रात हम वही सोचते रहते हैं, उससे मुक्त ही नहीं होते, वही घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है। देयर इज नो एंड टू दैट। यू हैव टू स्टॉप दैट। जो हो गया सो हो गया। तीसरा, फोकस, कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रेजेंट। क्या करना है अब? इस मोमेंट में, प्रेजेंट में कॉन्सेंट्रेट करना है। हम लोग जब घर पे होते हैं तो ऑफिस का सोचते हैं, ऑफिस में होते तो घर का सोचते, जहां है वहां नहीं है, कहीं और है। अभी आप लोग इस क्लास में ही, इस हॉल में बैठे हो, तो जस्ट रिमेन फोकस्ड 100% हियर, दिस मोमेंट। जो भी सुना जा रहा है यहां पर, या जहां कोई भी बैठता है और जो कुछ सुनाता है, सुनते सुनते ही अपने जीवन में डुबकी लगानी है। एक वहां क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, एंड व्हाई दिस डिस्टर्बेंस, क्यों माइंड निरंतर एक बेचैनी की अवस्था में रहता है, एक अजीब सी बेचैनी जिसका कोई नाम नहीं है, एक अजीब सा फियर, द फियर ऑफ द अननोन। सब कुछ ठीक है फिर भी डर लगा रहता है, किसका वो पता नहीं। सबसे बड़ा फियर कौन सा है? अननोन का, अज्ञात का भय। लिव इन दिस मोमेंट मतलब जब खाना खा रहे हैं तो जस्ट फोकस ओनली ऑन योर फूड, नहा रहे जस्ट फोकस ओनली ऑन दैट, इफ यू आर रीडिंग जस्ट फोकस ऑन रीडिंग, इफ यू आर वॉकिंग जस्ट फोकस ओनली ऑन वॉकिंग। दिस मोमेंट, इन दिस मोमेंट लाइज द इटर्निटी। इस पल में एक सदी छिपी हुई है। अभी यहां बैठे हैं तो मन को संपूर्ण रूप से एकाग्र कर देना है केवल जो शब्द कानों पर पड़ रहे हैं उन पर। मन भागेगा, ये क्लास पूरा हो गया फिर इसके बाद इधर जाना है, इधर जाना है, इसको मिलना है, उसको मिलना है, सब बाजू में। फोकस ऑन दिस मोमेंट। व्हेन यू आर प्लेइंग क्रिकेट, टेबल टेनिस, फोकस ऑन दैट। व्हेन यू आर इन द जिम, फोकस ओनली ऑन जिम। व्हेन यू आर डूइंग जिमनास्टिक्स, फोकस ओनली ऑन जिमनास्टिक्स। इफ यू आर रनिंग, फोकस ओनली ऑन रनिंग। इफ यू आर रीडिंग, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, जस्ट फोकस ऑन दैट। इफ यू आर सीइंग पेशेंट्स, जस्ट फोकस ऑन दैट। दिस मोमेंट। चौथा, फोर्थ पॉइंट, एक विजुअलाइजेशन स्लेट क्रिएट करनी है। डेवलप अ विजुअलाइजेशन सेट, स्लेट, एक व्हाइट स्क्रीन कहो या स्लेट कहो, उसमें मुझे कैसा बनना है वो रोज देखते रहना है। हाउ आई वॉन्ट माई सेल्फ टू बी, मुझे क्या है, क्या बनना है, वो देखना है। अभी मैं यहां हूं तो मुझे बनना कैसा है? ऐसा, कैसा कि जिसके जीवन में बहुत सारी चीजें हो, उसके रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा अच्छे हो, सबसे स्टेबल हो माइंड, शरीर फिट हो, जिसमें कोई बीमारी ना हो, ऐसा स्वस्थ, एक लचीला शरीर, स्ट्रांग बॉडी, स्ट्रांग माइंड, स्ट्रांग मेमोरी, स्ट्रांग चिंतन, स्ट्रांग जर्नी, स्ट्रांग प्यूरिटी। सी योरसेल्फ, डेवलप अ विजुअलाइजेशन स्लेट और स्क्रीन, और उसको रोज देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना। कि मुझे ऐसा बनना है, क्योंकि जो हम देखते रहते हैं वो बनते जाते हैं फिर धीरे धीरे। हमें याद है जब हम एमबीबीएस में थे तो फर्स्ट ईयर तो बाहर रहे थे, रैगिंग और ये सब, सेकंड ईयर में फिर हॉस्टल गए थे, और हॉस्टल में हमारे जितने फ्रेंड्स थे, हॉस्टल में जब रहते थे, तो सब लोग अभी डॉक्टर भी नहीं बने हैं, अभी तो एमबीबीएस ही कर रहे हैं। उसमें हर एक अपना अपने नाम के नीचे ढेर सारी डिग्रियां लगा के रखता था अपने दरवाजे पर, जैसे डॉक्टर अनिल एमबीबीएस एमडी यूएस दिस 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 दिस, तीन चार डिग्रियां, ऑप्थेल्मोलॉजी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, वहां देखने कौन आता है। तो कुछ कुछ अपने अपने डिग्रियां लगा के रखते थे। आज हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो जिसने जो लगाया था वो बन चुका है। जितने हमारे फ्रेंड्स थे सभी ऐसी ऐसी जगह पर है, कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, कोई कुछ है, तो कोई कुछ है, तो कोई कुछ है, पर ये विजन उन्होंने तभी देखा था। और ये वो लोग थे सारे जो कभी पढ़ाई नहीं करते थे, इनको पढ़ाई से सख्त नफरत थी, क्योंकि उनको बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर अफेयर्स बहुत ज्यादा थे, बाकी काम बहुत सारे थे, पढ़ाई लास्ट 2 months बस, वो भी केवल पास होने के लिए, दे वर नॉट इंटरेस्टेड। बट धीरे धीरे वो विजन उनके मन में था, दे चेरिश दैट विजन, और वो धीरे धीरे वो बन गए जो उन्होंने सोचा था। तो एक विजन बोर्ड, इसको कहते हैं विजन बोर्ड, इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन स्लेट, इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन स्क्रीन। चाहो तो एक बोर्ड रखो और उस पर लिखना रोज सुबह, मुझे क्या बनना है, मुझे कैसा होना है, एंड कीप इट सीक्रेट इफ यू वॉन्ट। ये चौथा। पांचवा एक्सरसाइज। आप में से कितने हैं जो डेली एक्सरसाइज करते हैं? बस, और बाकी दे ऑल आर फिट, वी डोंट नीड दैट। एक्सरसाइज इज नॉट जस्ट अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस, इट्स अबाउट वेलबींग। एक हाई लेवल ऑफ एनर्जी का अनुभव होता है व्हेन यू एक्सरसाइज। वो एक्सरसाइज कुछ भी हो सकती है, योगासन हो सकता है, रनिंग हो सकता है, जिम हो सकता है, जिमनास्टियम हो सकता है, कुछ भी, बट यू डू समथिंग। थाई जी हो सकता है, शिगोंग हो सकता है, कुछ भी, स्केटिंग हो सकता है, सिंपल वॉकिंग हो सकता है, जस्ट गो फॉर अ लॉन्ग वॉक, लंबा वॉक के लिए निकल जाओ। एक विदेशी लेखक ने लिखा है कि मेरे पिताजी से मेरा ऐसा भयंकर झगड़ा हो गया, और झगड़ा होते होते सुबह हो गई, झगड़ा चालू था, फिर पिताजी ने कहा इस घर में तुम रहो या मैं रहूंगा, उसने कहा मुझे नहीं रहना है आपके घर में, मैं जा रहा हूं। झगड़े झगड़े में निकल गया सुबह सुबह। अब निकल गया तो कुछ पैसे वैसे लेने का कुछ था ही नहीं, जेब में कुछ थे ही नहीं, तो पैदल ही निकल गया और चालू रखा, चलने लगा चलने लगा चलने लगा चलने लगा। सुबह का समय था, अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त, चलने लगा चलने लगा, 1 किलोमीटर, 2, 5, 6 किलोमीटर चलते 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 उसे ध्यान में आया गलती तो मेरी है। उसने ये बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग में लिखा है। वॉकिंग करते समय आप किसके संपर्क में आते हो? प्रकृति, फ्रेश एयर, ट्रीज, एबंडेंट प्राणिक एनर्जी, द प्राणा। सारी बीमारियों का कारण एक ही है, जो प्राण ऊर्जा है उसका कम हो जाना। स्वास्थ्य का एक ही राज है, प्राण ऊर्जा भरपूर हो जाना, दैट्स इट। द यूनिवर्सल लाइफ फोर्स, द ची, द एनर्जी, द पावर, द माइक्रोडस्ट, द कॉस्मिक माइक्रोडस्ट, द लाइट, द एनर्जी, ये जितनी ज्यादा भरी रहेगी, यू आर एनर्जेटिक ऑल द टाइम, यू नेवर गेट टायर्ड। नहीं तो हम ओपीडी में रोज देखते हैं कम से कम 60-70 पेशेंट्स डेली के हैं, उनमें से आधे से ज्यादा लोगों की कमजोरी क्या तकलीफ है? थकान सी रहती है, पता नहीं क्यों, रिपोर्ट सब नॉर्मल पर थकान सी रहती है, एक्सरसाइज वो तो नहीं करते। हमारे यहां एक डॉक्टर साहब थे और उनके युगल भी थे, कुछ कई साल थे, अभी तो चले गए, तो हम उनको पूछते थे, मैडम को, चावला मैडम, कि आप लोग कार क्यों नहीं ले लेते? बोलते कार अगर ले लूंगी तो आपके सर बेडरूम से वॉशरूम में भी कार लेके जाएंगे। एंड वन मोर थिंग अबाउट एक्सरसाइज, आप जिम में एक घंटा स्पेंड करो, उस एक घंटे में आपका ध्यान और कहीं जाता ही नहीं। यू डू वन आवर योगासन विद दैट पोज, सो योर ऑल माइंड इज हियर विद दैट स्ट्रेच, और कहां जाएगा? पुराना याद आएगा क्या? नो, यू आर फोकस्ड, यू आर लिविंग इन दैट मोमेंट। सो वन ऑफ द मेथड्स टू गेट रीड ऑफ द पास्ट इज डेली गुड एक्सरसाइज, ऐसी एक्सरसाइज कि पसीना आ जाए एक बार। 24 घंटे में एक बार तो पसीना आना चाहिए, अच्छा वाला, चाहे रनिंग से करो या किससे भी करो। हमारे ओपीडी में एक विदेशी बहन है, माता है, शी इज 91 एज। मैं बोला व्हाट इज द सीक्रेट, वो कहती है आई डू स्विमिंग एवरी डे 91 एज में। लंदन की माता, हमारे इधर तो बेड पे 60 साल 70 साल में ही बेड रिडन हो जाते। दैट अवेयरनेस इज सो लेस, सो बिगिन एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज मतलब यू डोंट हैव टू एट दिस एज, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू बिकम योग पटु और समथिंग लाइक दैट, नहीं। बी इन टच विथ नेचर, दैट्स इट, प्रकृति के सानिध्य में जाओ, एक घंटा बैठो, देन सी व्हाट हैपेंस, अ चेंज। नहीं तो कहा ना, बॉल नीचे गिरा है वो नीचे ही जाएगा, उसको अगर नई दिशा नहीं दोगे तो। अगला, फॉरगिव। नेक्स्ट पॉइंट, फॉरगिव। फॉरगिव अर्थात माफ कर दो, माफ कर दो और माफी मांग लो। ये दो काम रोज करने हैं, कौन से? माफ करना और माफी मांगना, और ये एक मेडिटेशन भी है। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे 2 मिनट। फिर सबसे पहले शरीर को स्थिर कर दो, पूर्ण रूपेण स्थिर। म्यूजिक, आंखें बंद, धीरे धीरे मंद होते जा रहा है। वातावरण में दिव्य मौन, शरीर स्थिर, मन शांत एकाग्र। जैसे किसी पहाड़ी के ऊपर बैठा हूं, पहाड़ी की चोटी पर। चारों तरफ सन्नाटा, मैं एक दिव्य चेतना हूं। मन की आंखों से अपने जीवन को देख रहा हूं। अब तक का ये जीवन उन सभी व्यक्तियों को देख रहा हूं जिन्हें जाने अनजाने में, नोइंगली अनोइंगली, चाहते हुए न चाहते हुए मैंने दुख दिया, हर्ट किया। जिनके विरोध में बोला, कमेंट्स किए, निंदा की, अपमान किया, वो मेरे स्वजन है या कोई बाहर के भी, उन सबको मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं और मन की एक ऊंची अवस्था से उन सभी को दिल से मैं माफी मांग रहा हूं। हे आत्माओं, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मेरा अज्ञान था, मुझे माफ कर दो। बिना इन आत्माओं की दुआओं के इस जीवन में हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं देख रहा हूं उन सभी आत्माओं ने मुझे माफ कर दिया है। मेरे सिर पर जो बोझ था वो कम हो रहा है। एक सुखद हल्कापन, दूसरी तरफ अब मैं उन लोगों को देख रहा हूं जिन्होंने मुझे दुख दिया, असहयोग दिया, निंदा की, ग्लानी की, पीड़ा पहुंचाई। चाहे उन्होंने जो भी किया, मैं आज अनकंडीशनल पार्डन, बेशर्त उन सब को माफ कर देता हूं। क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि मुझे अपने हृदय में जो घाव है उन्हें ठीक करना है। और मैं ये भी देख रहा हूं कि वो आत्माएं मेरे माफ करने से खुश हो रही है। मैं महान हूं। अब तीसरी ओर मैं उन लोगों को देख रहा हूं जिन्होंने मुझे बचपन से सहयोग दिया, मेरे मात पिता भाई बहन सब जिन्होंने मेरी पालना की बड़ा किया। मैं उन लोगों को देख रहा हूं मित्र संबंधी या स्ट्रेंजर्स जिन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया, आगे बढ़ाया, प्रोत्साहित किया, उनके प्रति अहोभाव धन्यवाद का भाव। Deep sense of relaxation. I am free from all the burdens. Sharir, man, sukhat anubhutiyon mein. शांति, आंखें खोलेंगे। ये तीन काम रोज करने हैं। पहला माफी मांगना, दूसरा माफ कर देना और तीसरा धन्यवाद। सभी एक बोझ जो सिर पर है वो कम हो जाएगा अगर 6 मास इसको किया जाए तो एवरीडे। किस किस से लड़ाई करूं, किस किस से झगड़ा करूं, द लाइफ इज सो शॉर्ट। व्यक्ति टेरेस पर है, उसका मित्र उसे मिलने नीचे आया है, वो ऊपर से कहता है मैं नीचे आ रहा हूं, सीढ़ियों से उतर रहा है और हार्ट अटैक एंड डेथ, खेल खत्म। नेक्स्ट पॉइंट, गुड बाय विजुअलाइजेशन। अतीत से मुक्ति का अगला मार्ग क्या है? गुड बाय विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन एक बहुत पावरफुल टेक्निक है। हम इन आंखों से देखते हैं और विजुअलाइजेशन है मन की आंखों से देखना। जिस व्यक्ति को हम भूलना चाहते हैं, जिस इवेंट को भूलना चाहते हैं, जिस घटना से मुक्त हो जाना चाहते हैं, उसकी यादें बार बार आती रहती है, इतना हम दबाते हैं वो दब जाए, भूल जाए, हट जाए, फिर भी बार 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 आती रहती है, दुखी करती रहती है हमको। सारा ज्ञान है हमारे पास, बुक्स पढ़ी है हजारों, टेक्निक्स पता है, फिर भी होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लॉजिक का प्रयोग कर रहे हैं केवल। यू हैव टू यूज विजुअलाइजेशन। गुड बाय विजुअलाइजेशन। जैसे सोचो मेडिटेशन में एक बहुत बड़ा बलून है, उस बलून में हमने जो जीवन की ऐसी घटनाएं जो हम नहीं चाहते, या ऐसे व्यक्ति जो हमें दुख दे रहे हैं, हम चाहते उनसे दूर हो जाए पर दूर हो भी नहीं पाते, उन सबको उस बलून में भर दो और उसको उड़ा दो। उड़ के दे आर गोइंग अवे एंड अवे एंड अवे एंड सी देम गोइंग। क्रिएट न्यू विजुअलाइजेशंस। गुड बाय कर दो उसको, हो गया, अभी उसका कोई लेना देना नहीं है। कोई कैंडिडेट है, एग्जाम में फेल हो गया, बस उसको वही एक फियर रहता है कि अगली बार मैं फिर फेल हो जाऊंगा। फियर, यू हैव टू क्रिएट अ वेरी पावरफुल विजुअलाइजेशन। और विजुअलाइजेशन जो भी क्रिएट करो वो बहुत क्लियर हो, डिस्टिंक्ट हो, देखो उसमें ऐसा है। अपने आप होने लगेगा वो. ऑल इन्वेंशंस, एवरीथिंग हैपेंस फर्स्ट इन द माइंड, माइंड में होता है. सुबह सुबह का जो पहला विचार है, वहीं पर उठते ही संकल्प कि आज मुझे बहुत खुश रहना है. एक व्यक्ति था, उसका गुरु था, तो वो गुरु हमेशा ही सुखी रहता था, हमेशा ही खुश रहता था, हमेशा ही हंसता रहता था. अब उसकी मृत्यु का समय है, उसका शिष्य पूछता है, जाने से पहले मुझे ये सीक्रेट बता के जाओ, हाउ यू मैनेज टू रिमेन हैप्पी होल लाइफ. तो उसका गुरु कहता है, आई हैड माय ओन गुरु जिनका नाम था अब्दुल्ला. तो उनकी आदत थी कि सुबह उठते ही वो अपने आप से बातें करते थे, अब्दुल्ला तुझे क्या चाहिए, सुख या दुख? तो सुबह सुबह चॉइस होती थी सुख, बस सुबह सुबह ही चॉइस कर ली, अब सारा दिन अपने आप वैसा होगा. यू डिसाइड व्हाट यू वांट. सुबह सुबह क्या चाहिए, प्यूरिटी इम्प्यूरिटी? सुबह सुबह क्या चाहिए, विकार या सुख? सुबह सुबह क्या चाहिए, सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट वर्ल्डली या स्पिरिचुअल हैप्पीनेस? यू डिसाइड. अपने आप दिनचर्या उस ओर चलेगी. सुबह उठते ही पहला संकल्प व्हाट इज, और उसका संबंध है रात को सोते समय पहला रात अंतिम संकल्प. रात को कैसे सोया जा रहा है, टीवी देखते देखते, मोबाइल यूज करते करते, सोशल मीडिया पर, जिस अवस्था में सोओगे उठते ही दैट बिकम्स द फर्स्ट थॉट. गीत सुनते सुनते सोओगे, उठते ही वो गीत याद आ जाएगा. टीवी देखते देखते, मूवी देखते देखते सोओगे, उठते ही वो सीन वो दृश्य याद आ जाएगा. और मेडिटेशन करते करते सोओगे with a very relaxed state of the mind, you wake up with that relaxation, that relaxed state of the mind, an extremely energetic. थकान क्या होती है आपको पता ही नहीं चलेगा. मुझे बहुत आश्चर्य होता है ओपीडी में बैठ के, मैं रोज देखता हूं 60-70 कभी 100 पेशेंट्स भी क्रॉस कर जाते हैं, इतने सारे एडमिशंस, और वो सब की कंप्लेंट्स, यंग लोग क्या कहते हैं, हमको थकान रहती है, ये रहता है, वो रहता है, ऐसा रहता है, वैसा रहता है, डर लगता है, नींद नहीं आती है, और बहुत सारी कंप्लेंट्स उनकी. इफ यू आस्क फॉर मी, आई डोंट नो व्हाट इज फटीग. मुझे पता ही नहीं ये थकान क्या होती है. आई रिमेन अन डी फटीगेबल. You connect to the source, fatigue goes away, थकान चली जाएगी. हमें लगता है हमारी बीमारियां इतनी ज्यादा है, लोग तो दुखी होते हैं कि हमारे रिपोर्ट में कुछ नहीं आता और हम तो बहुत बीमार हैं. बीमारी तो ढेर है पर रिपोर्ट में ही नहीं आता है. बुखार तो हमेशा है पर वो थर्मामीटर में कभी नहीं दिखाता. ये अजीब सा बुखार है, इधर ठंडा लगता है इधर गर्म लगता है, अजीब अजीब सिम्टम्स लेके आते. बाकी सब बीमार पड़ते, हम क्यों नहीं बीमार पड़ते, ऐसा भी कई कही है. बहुत दुखी है इस वजह से भी, उनको एडमिट होना है. एडमिट होते हैं और फिर सलाइन की बोतल जब चढ़ती है तो एकदम सीना फूल जाता है कि हम भी, हमको भी लोग मिलने आए, हमको भी पूछे कैसे है, फिर धीरे से कहेंगे कल से आज थोड़ा ठीक लग रहा है. इससे इंपॉर्टेंस बढ़ता है थोड़ा. कौन कौन मिलने आए, जब वो बीमार था तो हम मिलने गए थे, अब वो क्यों नहीं आए अभी तक. कहां कहां बुद्धि भटकती रहती है, भटकती रहती है, भटकती रहती है. गुड बाय विजुअलाइजेशन. जो चीजें हमको नहीं चाहिए, जो चीजें हमें डिस्टर्ब कर रही है, जो चीजें निगेटिव है, जो चीजों से हम मुक्त होना चाहते हैं, वो कोई भी आदत हो सकती है. इट कुड बी एनीथिंग, सोशल मीडिया से लेके कोई एडिक्शन होगा, कुछ भी, एनी एडिक्शन. यू सी एवरी डे कि आप उससे मुक्त हो रहे. एक व्यक्ति था जिसको स्मोकिंग की आदत इतनी ज्यादा थी, उसकी पत्नी ने कहा कि जब तुम स्मोकिंग जब तक छोड़ेगे नहीं, उसकी जो बेटी है उससे तुम नहीं मिल सकते. वो लेके चली गई और उसको अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार था, और उसकी पत्नी ने कहा आई विल नॉट अलाउ यू टू सी हर अनलेस एंटिल यू गिव अप स्मोकिंग. उसने एक विजुअलाइजेशन तैयार किया अपना कि आई एम प्लेइंग विथ माई डॉटर एवरी डे, और वो देखता है मैं अपनी डॉटर के साथ खेल रहा हूं. पर उसके साथ फिर दूसरी चीजें जुड़ जाती है, ये कब होगा, जब मैं ये छोड़ दूंगा तब. तो ही क्रिएटेड अ विजुअलाइजेशन और धीरे धीरे वो छूट गया. सो दिस इज द वे. आप लॉजिक से जाओगे तो माइंड सुनता नहीं है. माइंड को कहो ये नहीं करना, वो वही करेगा. उसको बताओ ये नहीं करना चाहिए, वो देखेगा. वो बच्चा है एकदम. जैसे सिगमंड फ्राइड था, सब जानते हैं, फादर ऑफ साइको एनालिसिस, पूरा साइकियाट्री जिसके जिसने खड़ा कर दिया साइकोलॉजी, सिगमंड फ्राइड. वो अपनी पत्नी के साथ एक दिन गार्डन में गया. टाइम हो गया, बच्चा खेल रहा इधर उधर, और जब वो लोग बाहर आए पति और पत्नी, और फिर पूछा बच्चा गायब, बच्चा कहाँ है, ढूंढने लगे, सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिला, बच्चा कहाँ है. फिर सिगमंड फ्राइड अपनी पत्नी से पूछता है क्या तुमने उसे कहीं जाने से मना किया था. वो कहती हां, वो झरना फवारा है ना, फाउंटेन, वहां जाने से मना किया था. वो कहता है जाओ वही होगा. वो जाके देखती है वो पाव पानी में डाल के खेल रहा है, क्योंकि उसे मना किया गया था वहां नहीं जाना, ही वेंट देयर ओनली. दिस इज द टेंडेंसी ऑफ द माइंड. उससे ना बहुत वो चालाकी करता है, इट ट्रिक्स यू. अच्छी अच्छी प्रतिज्ञा करते लोग यहां पर आते हैं ना, कहते हैं हम बहुत अभी मेडिटेशन करेंगे, पर यहां जब तक है तब तक है. जैसे कोई सत्संग में जाते हैं ना, राम कथा सुनते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और उठते समय कपड़े झाड़ते हैं ना, बस ये हॉल से बाहर जाने के बाद भी और इस कैंपस से बाहर जाने के बाद भी झाड़ के, बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस थी, दूसरों को बताएंगे तुम भी जाओ, तुमने जाना चाहिए, हमको बहुत अच्छा लगा. तुमने क्या सीखा? अरे बहुत सीखा, बहुत अच्छा था. बाकी कोई बदलाव कुछ नहीं, वो वहां का वहां रहा. वो मेडिटेशन करना चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा लगता है, एकदम अच्छा, एकदम लाल लाइट और वो जो कॉमेंट्री होती है ना, एकदम शांति का अनुभव है. अभी तक गए नहीं तुम, यू मस्ट गो वंस. तुमने क्या किया? खुद करना है. इसीलिए अगर यहां से कोई एक चीज लेके जानी है तो हम हमेशा बताते हैं कि आपको वो किसी क्लास से नहीं मिलेगी वो पॉइंट. इफ यू वॉन्ट टू रियली लर्न समथिंग फ्रॉम हियर इन दिस यूर मीटिंग, इन दिस यूर विजिट, यहां जो अननोन लोग हैं, किचन में जाओ, कोई माता है बूढ़ी, कोई भाई है पुराना, उससे पूछो तुम यहां क्यों आए. दैट इज द रियल स्पीच, दैट इज द रियल कॉन्फ्रेंस. जो वो उत्तर देगा ना, उसके सामने ये सारे भाषण कुछ भी नहीं है. उसको तो पता भी नहीं यहां ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस चालू है, कुछ भी नहीं पता. एक बार एक बहुत बड़े पुलिस कमिश्नर आए थे नीचे शांतिवन में, वहां मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स है एक थोड़ा सा बाजू में, तो वो वहां खड़े थे. अभी कॉन्फ्रेंस पूरी हो गई थी, अभी उनको जाना था. तो एक भाई है, बड़ा भोला भाई है वो, तो उसने कहा आपको कहाँ जाना है? तो उन्होंने कहा वहां उधर बस के लिए वेट कर रहे. बोला बैठो, गाड़ी का डंडा होता है ना साइकिल का, उस पर बिठाया और वो पीछे पकड़ पकड़ और उनको लेके गया पूरा. और उसकी एकदम मतलब वेरी हार्ट टचिंग टॉक्स. तो वो कमिश्नर साहब कहते हैं वो जितने लेक्चर सुने सब भूल गया मैं, मुझे खाली वो आदमी याद है बस, वो भाई उतना मुझे याद है, बाकी आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग. व्हाट टचेस इज द एक्शन, व्हाट टचेस इज द डायरेक्ट एक्शन यू आर सीइंग इन द लाइव्स ऑफ पीपल. यू डोंट रिमेम्बर दी स्पीचेस, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, कौन से पॉइंट थे पता नहीं, गॉन. बहुत अच्छा लेक्चर था, सुनना चाहिए, बस इतना याद है, बाकी नथिंग. बाकी इसका ऑडियो भी मिल जाए तो वी विल फॉरवर्ड इट टू 10 पीपल, मस्ट लिसन, सुपर क्लास, परफेक्ट. मेल कर दोगे दो तीन लोगों को, और वो क्लास, वो ऑडियो बेचारा अनाथ घूमते रहेगा इधर से उधर, उधर से, क्योंकि जिसको आपने भेजा उसके पास टाइम नहीं है. जैसे आपके पास टाइम नहीं है तो वो क्या करेगा, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड, वो फॉरवर्ड ही होते रहेगा। नोबडी हैज अ टाइम टू लिसन। मीट अ पर्सन, सम ओल्ड लेडी इज देयर हु इज डूइंग सम सर्विस इन द किचन, इन द डाइनिंग, इन द लॉन्ड्री, इन समवेयर, इन सम पार्ट्स ऑफ दिस कैंपस। आस्क हर व्हाई यू आर हियर। You will meet a young person. He can do so many things in the world, but he has left the world and he has surrendered himself in this campus. Why you did this? The answer which he will give is the real speech. Visualization. Agla points, hobbies. New hobbies create karo. ताकि पास्ट का जो प्रभाव है उससे मुक्त हो जाए। कौन सी हॉबीज हो सकती है? रीडिंग हो सकता है, राइटिंग हो सकता है, कुछ भी, ड्राइंग हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, कुछ भी, कुछ तो करो। सम गुड हैबिट जो आपने अभी तक जो किया नहीं। वन ऑफ द थिंग्स आई विल टेल इज हैंड राइटिंग स्किल, कैलीग्राफी। इट्स अ वेरी गुड आर्ट। इफ यू हैव टाइम, प्रैक्टिस कैलीग्राफी। हिंदी कैलीग्राफी, इंग्लिश कैलीग्राफी, बोथ, या आपकी जो भाषा है वो। अनदर थिंग इज लैंग्वेज, स्टडी लिटरेचर। क्योंकि माइंड को अगर बिजी नहीं रखा जाए, इट विल गो बैक टू द ओरिजिनल मेमोरीज, और वो मेमोरीज बहुत खतरनाक है, डेंजरस है। जिसको हम जितना उसको कुरे देंगे वो और भड़केगी। जैसे यहां चोट लग गई तो क्या किया जाता है? प्लास्टर, पट्टी लगाई जाती है। अगर पेशेंट 10-10 मिनट में पट्टी खोल के देखेगा, भरेगा कि भरा गया, ठीक हुआ कि नहीं, इट विल नेवर हील। वंस यू पुट द प्लास्टर और द ड्रेसिंग, डोंट टच इट नाउ। इफ यू कीप ऑन लुकिंग, इट विल नेवर हील। इन द सिमिलर मैनर माइंड में ढेर सारी मेमोरीज है, अच्छी बुरी, मोस्टली निगेटिव मेमोरीज भरी पड़ी है उसमें। किसी ने हर्ट किया, किसी ने ठीक से बात नहीं की, हम बैठे थे और किसी ने उठा दिया, उठो ये तुम्हारी जगह नहीं है, अपमान कर दिया। सो मेनी थिंग्स आर देयर। वो सब हर्ट्स है, उसको बैंडेज लगा के छोड़ दो एंड एंगेज यूर सेल्फ इन न्यू हॉबीज। न्यू हॉबीज वो करो जो कब तक किया नहीं। इट कुड बी म्यूजिक, इट कुड बी प्लेइंग म्यूजिक, लर्निंग न्यू स्किल, वो बहुत बहुत जरूरी है। लर्न समथिंग न्यू। हमारे पास मैडम है, उनके हाथ का फ्रैक्चर हो गया। अब वो तो डॉक्टर है, उनको लिखना पड़ता है। सो शी देन रादर देन कीपिंग एन असिस्टेंट, शी डिसाइडेड कि लेट मी राइट विद दिस हैंड, लेफ्ट हैंड। फिर सारे प्रिस्क्रिप्शन इससे लिखना चालू कर दिया। एंड बाय द एंड ऑफ 1.5 मंथ, 2 मंथ, शी वॉज क्वाइट ओके। हर हैंड राइटिंग वॉज बिकम क्वाइट गुड विद द लेफ्ट हैंड। सो दैट इज, वो तो जरूरत, मतलब वो जबरदस्ती हुआ था, बट ट्राई न्यू स्किल्स। जो बचपन में हम चाहते थे ये मुझे सीखना है, अब नहीं सीखे क्योंकि परिस्थितियां अब ऐसी नहीं थी। नाउ थिंक एंड ब्रिंग दैट स्किल, और उस स्किल को खुद भी सीखो और दूसरों को भी सिखाओ। लर्न एट द सेम टाइम, बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग क्या है? टीचिंग अदर्स। नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेंट एंड री इन्वेंट यूर सेल्फ। खुद की खोज करनी है। बाकियों की बहुत खोज कर ली हमने, बाकियों की बहुत स्टडी कर ली, दूसरों के जीवन पर तो हमारी PhD है। किसमें कितने दोष है, थीसिस लिख रखा है हमने, दूसरों के फेलिंग्स, शॉर्टकमिंग्स, इम्परफेक्शंस पर हमने अपने आप को कितना खोजा है, सेल्फ डिस्कवरी कितनी की है। मुझे खुद को देखना है कि मैं कहां हूं, वेयर आई स्टैंड। जैसे कहा, मनुष्य जो है वो बहुचित्तवान है, पॉलीसाइकिक है। हैव आई अंडरस्टूड माई सेल्फ फुल्ली? मार्क ट्वेन ने अपने जीवन में लिखा है, अपनी जीवन कहानी में एक जगह, मार्क ट्वेन ये इंग्लिश ऑथर, व्हाट ही हैज रिटन इज, एक बार वो चर्च गया और चर्च में भाषण हुआ पादरी का दान पर, डोनेशन पर, और जब भाषण सुनते सुनते ही उसको लगा कि मैंने अब तक कोई दान नहीं किया, मैं आज बहुत बड़ा दान दे दूंगा। और भाषण पूरा हुआ, फिर वो एक होता है वो दान पेटी, वो घूमती है ऐसी एक एक एक, एक लाइन में, तो उसको लगा कि आज तो मुझे सर्वस्व समर्पित करना है परमात्मा के लिए, धर्म के कार्य के लिए। वो पेटी घूमती रहती है, फर्स्ट लाइन से जाती है, वो सोचता है कि मैं एक तो आज तो सीधा $500 दे दूंगा जितने मेरे पास है। फिर वो सेकंड रो में जाती है, वो पिछले रो में बैठा हुआ है, फिर वो सोचता है 500 तो थोड़े ज्यादा हो गए, इट्स टू मच, 400 इज ओके, क्योंकि इतने लोग डोनेशन वाले हैं, सभी तो दे रहे। फिर वो थर्ड रो में जाती है, फिर कहता है 400 भी बहुत ज्यादा है, वैसे भी ये लोग करते क्या है, ये जाएगा कहां, इन्हीं के पास जाएगा, ये पादरी वगैरह करते क्या है, जो पैसा मिलता है उसे खाते पीते हैं बस। तो मेरा ये नहीं, 400 टू मच, 300 इज ओके, और फिर 200, और फिर 100, और फिर वो जो दान पेटी उसके पास आती है, इधर उधर देखता है और वहीं से उठा लेता है। तब तक ही हैज बिकम आउट एंड आउट निगेटिव, व्हाट ही थॉट एंड व्हाट हैपेंड, डू वी रियली नो आवरसेल्फ्स, जस्ट स्टडी योरसेल्फ, योर वन डे का एक स्क्रीन एंड सी, इन द मॉर्निंग टाइम में इतने पॉजिटिव थॉट्स, इतने हाईएस्ट थॉट्स, बाय आफ्टरनून दे कम डाउन, बाय इवनिंग दे अगेन कम डाउन, एंड बाय नाइट टोटल विकार, सब कुछ खलास। इसीलिए यू नीड ब्रेक इन बिटवीन। आपने देखा होगा ब्रह्मा कुमारीज में यहां पर इवनिंग मेडिटेशन होता है 6:30, 7:30, नुमा शाम योग कहते हैं उसको। दिस इज अगेन टू गैदर योर सेल्फ, बिकॉज दिनचर्या में हजारों प्रकार की हलचल होती है, 100 लोगों के कॉन्टेक्ट होते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। यू हैव टू सिट डाउन एंड स्टेबिलाइज योर सेल्फ अगेन। माइंड को वश में करना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। चंचला मन कृष्ण, मैं क्या करूं हे गोविंद। मन को वश में करना तो हवा को मन की वश करने जैसा है। अभ्यास न तु कौनते ये वैराग्य न चुगुई होते, विथ प्रैक्टिस एंड डिस्पैशन, अभ्यास और वैराग से हे अर्जुन तुम मन को वश में कर सकते हो। इट इज अ प्रैक्टिस विच यू नीड एवरी टाइम एवरी डे, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। एक चित्र किसी ने भेजा था, वो बहुत अच्छा था। सबसे बड़ा योगासन कौन सा है, उसमें कोई सिर पर पैर लगा रहा है, कोई इधर से पैर डाल रहा है, इधर से पैर डाल रहा है, और लास्ट में एक व्यक्ति है खाली ऐसा बैठा है। दिस इज द ग्रेटेस्ट योगिक पोस्चर, स्थिर। यू कैन जस्ट सिट स्टेबल फॉर 1 आवर एक ही चेयर में, बिना हाथ और उंगली और पैर हिलाए स्टेबल। ये भी एक अभ्यास है। शरीर को जितने वश में किया वो मन को वश में कर लेता है धीरे धीरे। बुद्ध भाषण दे रहे हैं, लेक्चर चालू है, एक प्रवचन चालू है, और सामने एक शिष्य बैठा है, वो अपने पैरों का अंगूठा ऐसे ऐसे कर रहा है कंटिन्यूस। बुद्ध बोलते बोलते शांत हो जाते हैं, कहते हैं क्यों, कहते पहले उस पैर के अंगूठे को स्थिर करो, तब तक मैं नहीं बोलूंगा। ये भी एक अभ्यास है, एटलीस्ट 10 मिनट्स एक ही पोस्चर में स्थिर रहने का अभ्यास, आंखों को स्थिर करने का अभ्यास। ये आंखें बहुत चंचल है, भागती है इधर उधर 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 उधर, वेर एवर आईज गो एनर्जी फ्लोस। इसके लिए कई सारी ध्यान साधनाएं हैं, ध्यान शिविर होते हैं, जहां पर उनको ये सिखाया जाता है डाउनकास्ट आईज, आंखें नीचे, बस नीचे देखकर चलो, इधर उधर देखोगे तो बुद्धि जाती है, यहां क्या है, ये पोस्टर में क्या है, ये पिक्चर में क्या है, यहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, आंखें नीचे डाउनकास्ट। ये आध्यात्मिक साधना एक डाउनकास्ट आईज की, जो मौन शिविर होते हैं 50 लोगों का, एक दूसरे से बात नहीं करते, साइलेंस रिट्रीट होती है संसार में कई जगह पर, नॉट अलाउड टू टॉक विथ ईच अदर फॉर दोज 20 डेज 30 डेज, चुप रहो बस, और चलो तो नीचे, आंखें नीचे। तो री इन्वेंट यूर सेल्फ। अगला नेक्स्ट पॉइंट, जर्नलिंग। क्या करना है? जर्नलिंग, एक आदत डालनी है, रोज रात को सोने से पहले आज दिन भर क्या हुआ वो लिखना। कितने लोग लिखते हैं डायरी? नोबडी। इट्स अ वेरी गुड हैबिट, यू राइट डाउन डायरी। जैसे आज सुबह लिखो आज डेट क्या है, वो लिखा। कितने बजे लिख रहे डायरी, वो टाइम लिख दिया। सुबह से क्या किया, उठे कितने बजे, किससे मिले, सब लिखो उसमें, सब कुछ राइट डाउन। वो आया, उसने मुझे ऐसा ऐसा बोला, फिर बहुत रोना आया, वो भी लिख दो। फिर वो लेक्चर सुना, बहुत ही भयंकर बोरिंग था, पर बैठना पड़ा इसलिए बैठे, अभी क्या करें, वो भी लिखो। राइट एवरीथिंग एंड एट लास्ट गुड नाइट। एवरी संडे वो डायरी को, That's what I'm saying you, लिखना पुराना नहीं है, आज दिन भर जो हुआ उसको लिख दो, और फिर उसको साक्षी होके दो दिन के बाद देखोगे तो लगेगा इतनी छोटी सी बात जिसने मुझे रुला दी वो तो कुछ थी ही नहीं। यू विल ग्रेजुअली स्टार्ट गेटिंग डिटैच्ड एंड फोकस्ड ऑन योर मेथड्स ऑफ राइटिंग। उसको अलग अलग पेन से लिखो, अगर डर है कि कोई दूसरा पढ़ ले तो कोड वर्ड्स यूज करो। बट आई विल टेल यू, आप अपनी डायरी सामने भी रख दो ना, कोई नहीं पढ़ेगा। हर एक अपने दुख दर्द में इतने डूबे हुए हैं, किसको क्या पड़ी है, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है वो जानने की कुछ मतलब नहीं है किसी को। यहां तुमको अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या लगा, कुछ लगा, कोई मतलब नहीं। पीपल आर लॉस्ट इन देयर ओन सॉरोज एंड सफरिंग्स, बट इट इज अ वेरी गुड हैबिट। इसमें और एक चीज हो सकती है कि आपको अभी ये जिस डेट्स में आप यहां आए थे, एक महीने के बाद में आपको याद करना, यू विल सी द डायरी, अच्छा है वो 3 दिन थे, तब मन की स्थिति कैसी थी। वो भी तो मैं ही था जो आज इतना डिस्टर्ब हूं एक महीने के बाद यहां से जाने के बाद, बट वो भी मैं ही था जो एकदम शांत था और उसने डायरी लिखी थी और ऐसे ऐसे पॉजिटिव थॉट्स लाए थे। सो इट इज द चेंज ऑफ द माइंड। लेट मी गो बैक टू दैट ओरिजिनल सिचुएशन, दैट ओरिजिनल स्टेट ऑफ द माइंड। सो जर्नलिंग, डायरी राइटिंग, अमेरिका का जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट था, ही यूज टू राइट, व्हाट वाज हिज नेम, जॉन वॉश, ने फाउंडिंग प्रेसिडेंट, अब्राहम लिंकन इज द प्रेसिडेंट 32nd, वो नहीं, बेंजामिन फ्रैंकलिन, यस बेंजामिन फ्रैंकलिन इज द फाउंडिंग फादर ऑफ अमेरिका। वो उसकी एक आदत थी रोज डायरी लिखने का, और उसके 13 पॉइंट्स थे कि आज ह्यूमिलिटी थी नहीं थी, आज ऑनेस्टी थी नहीं थी, आज प्यूरिटी थी नहीं थी। ही यूज टू चेक एट नाइट इन 17th century इब्राहिम, दिस वन। सो ही यूज टू राइट हिज डायरी एवरी डे। और डायरी राइटिंग के अपने फायदे हैं, इट डिटैचेस यू, आपने उसको लिख दिया, उसमें डॉक्यूमेंट कर दिया, क्योंकि कई बार ऐसी बातें होती है जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, तो डायरी इज वन ऑफ द मेथड जिसको आप शेयर कर रहे हो, क्योंकि यहां शेयर करना मतलब थोड़ा खतरा ही है, किस पर विश्वास करें। नेक्स्ट पॉइंट, कीप पेशेंस। घटनाएं हुई है जीवन में, दर्दनाक घटनाएं हुई है, वो एक दिन में भूलती नहीं है। टाइम इज द बेस्ट हीलर, वेट एंड वॉच, होगा सब ठीक हो जाएगा, इट विल बी ओके। अपने आप से बोलते रहो, वो सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये भी एक टेक्निक है, इट्स ओवर, इट विल बिकम ओवर, इट विल गेट फिनिश्ड। ये बोलते रहना, रिपीट करते रहना, तो धीरे धीरे हम उससे डिटैच्ड होते जाएंगे। नेक्स्ट, कोट्स एंड अफर्मेशंस। अफर्मेशन पता है ना, अफर्मेशन ऐसी लाइन्स होती है, एक एक, तीन प्रकार के अफर्मेशन से एक है। पहला अफर्मेशन मतलब एक स्टेटमेंट, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट। पहला अफर्मेशन होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा अफर्मेशन होता है नेचुरल, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। जैसे किसी को कोई दारू पीता है, अल्कोहलिक है और उसको अल्कोहल छोड़ना है, तो अफर्मेशन क्या होता है वहां पर, मैं दारू छोड़ रहा हूं। दूसरा नेचुरल, मेरे लिए बहुत ही आसान है, मैं तो अब भी छोड़ दूंगा, ऐसे बोलते रहना। तीसरा, मैं जल्दी ही छोड़ दूंगा, फ्यूचर टेंस। स्पोर्ट्स में जितने एथलीट्स होते हैं वो कैसे प्रैक्टिस करते हैं, आई एम कमिंग फास्ट। स्पोर्ट्स के अफर्मेशंस आप गूगल प्ले पे जाओ, वहां पे आपको ऐप मिलेंगे अफर्मेशंस, 1000 अफर्मेशंस। स्पोर्ट्स में क्या अफर्मेशंस, हेल्थ के लिए क्या अफर्मेशंस। फ्रेंच में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर कू है, उसने कितने लोगों को ऐसे ही ठीक कर दिया। कैसे, कि पेशेंट्स को बस वो एक ही मंत्र देता था कि मैं ठीक हो रहा हूं, 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 बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, दिन रात कीप ऑन राइटिंग। इसको हम आध्यात्मिक भाषा में स्वमान कहते हैं, हायर कॉन्शियसनेस, हिंदी में पॉजिटिव, इंग्लिश में पॉजिटिव अफर्मेशंस या हायर कॉन्शियसनेस वाले अफर्मेशंस, करते रहना करते रहना करते रहना। जो आप रिपीट करते रहोगे, रिपीट करते रहो, मैं गधा हूं मैं गधा हूं मैं गधा हूं मैं गधा हूं, कोई कहेगा ये सॉल्व करो, बोलते मुझे नहीं आएगा, मैं गधा हूं। अपने आप पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते ना, तुम गधे हो तुम गधे हो तुम गधे हो, वो डीप चला जाता है उनके, इट गोज इन टू डीप इन द माइंड। कोई भी अफर्मेशन से यू कैन बिकम एनीथिंग, बस कीप ऑन रिपीटिंग दैट थिंग विद इन यूर सेल्फ। हमने देखा है दो प्रकार के पेशेंट होते, एक पेशेंट वो होते जो कभी खुश नहीं होते। एक बार दो बहनें एडमिट थी, विदेश की, बाहर की आई थी, कुछ टूरिस्ट वगैरह, कोविड के समय में, दोनों एक ही रूम में, और पर एक बहुत ही खुश, एक को सब प्रॉब्लम, यहाँ का स्टाफ ठीक नहीं है, यहाँ का खाना ठीक नहीं है, यहाँ की लाइट नहीं है, यहाँ, और दूसरी एनी कंप्लेंट, नो आई एम जस्ट हैप्पी आई एम फ्लाइंग ऑल द टाइम। एक को कुछ भी कंप्लेंट नहीं, एक को ढेर सारी कंप्लेंट, देखा गया उसको तो ठीक भी हो गई, डिस्चार्ज भी हो गई, वो जाते समय भी बोलते नो नो आई एम नॉट वेरी हैप्पी, क्या उसका मन ही असंतुष्ट था, कोई चीज उसको पसंद नहीं, कुछ भी, हर चीज में दोष, हर चीज में दोष ही दोष। सो इट डिपेंड्स। इसके लिए एक जोक भी है, एक व्यक्ति था जिसकी बीमारी बिल्कुल ठीक नहीं हो रही थी, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा तुम बस बोलते रहो मैं ठीक हो जाऊं मैं ठीक हूं मैं ठीक हूं, और वो ठीक हो गया, आश्चर्य हो गया सबको। और उसकी जो पत्नी थी उसने नोटिस किया कि अब मेरे पति को मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं है कुछ, वो बात भी नहीं करता है ठीक से, ऐसा क्या हो गया, तो उसको नोटिस करती है कि ऐसा व्हाट हैज हैपेंड कि वो ही डजंट बिहेव लाइक ए हस्बैंड। और फिर उसने ये भी नोटिस किया, ये बाथरूम में जब जाता है तो अंदर निकलता नहीं जल्दी, तो एक बार वो कान लगा के सुनती है बाथरूम में क्या बोल रहा है, तो वो अंदर से रिपीट कर रहा है, ये मेरी पत्नी नहीं 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 है, ये मेरी पत्नी, शी इज नॉट माई वाइफ, शी इज नॉट माई वाइफ, आई एम नॉट हर हस्बैंड, शी इज नॉट माई वाइफ। तो उसका डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन हो गया कि ही लॉस्ट इंटरेस्ट, ये कुछ है ही नहीं अभी मेरे से, संबंध ही नहीं है। पावर ऑफ अफर्मेशन, तो पॉजिटिव में भी काम करेगा, निगेटिव में भी काम करेगा, किधर भी काम करेगा ये। आप किसी को समझ लो ये दुश्मन है तो बस वो दुश्मन है, दुश्मन है, वो घूमते रहेगा। आपके घर में मेड है जो काम करती है, आपका फिक्स धारणा है ये चुराती है कुछ ना कुछ, फिक्स्ड है, चम्मच नहीं दिखा तुरंत मन में विचार आया वो लेके गई होगी तुरंत, जबकि उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, पर आपने सोच ही लिया है। एक व्यक्ति है, खेत है, खेत के पास उसका घर है, उसका फावड़ा एक दिन गुम हो गया, वो देखता है वहां पे खेत के बाजू में एक झोपड़ी है, वहां पे एक लड़का है, और जब से इसका फावड़ा घूमा उसको पहले से ही शक है कि इसी लड़के ने लिया होगा, और जब से उसका फावड़ा घूम गया वो तो उसको और ही शक की नजर से देखता है, अरे मुझे देख के उसने उधर क्यों देखा, जरूर इसी ने लिया, इसी ने लिया। और चार दिन के बाद उसका फावड़ा दिख जाता है, फिर वो सोचता है ये बच्चा कितना मासूम है। इट्स ऑल इन द माइंड, अफर्मेशंस, सो क्रिएट पॉजिटिव अफर्मेशंस। आपके पास अगर नहीं है अफर्मेशंस, सो यू कैन टेक फ्रॉम द इंटरनेट, गूगल से अफर्मेशंस डाउनलोड कर लो, ढेर सारे, हर चीज के लिए अफर्मेशंस है। हाउ टू बिकम रिच, रिच के अफर्मेशंस है, हाउ टू बिकम हेल्दी, उसके अफर्मेशंस है, हर चीज के अफर्मेशंस अवेलेबल। नहीं तो अभी नया जो निकला है चैट जीपीटी, उसमें टाइप कर लो 100 अफर्मेशंस फॉर हेल्थ, यू विल गेट, एनीथिंग यू पुट यू विल गेट। सो अफर्मेशंस, उसके बाद में अगला पॉइंट है राजयोग, पास्ट से मुक्त होना है तो वो राजयोग सीखना है। और राजयोग बहुत बड़ी यात्रा है। यहां हम लोग सब इतने सालों से हैं, परंतु अभी भी सीख ही रहे, ये है क्या, पूरा अभी तक नहीं समझ में आया है। वो जो 7 दिन का कोर्स है ना आत्मा परमात्मा वाला, वो पूरा जीवन चलता है, फिर भी कोई ये नहीं कह सकता है कि मैंने सब कुछ जान लिया है। इट्स वेरी डीप, वेरी वेरी डीप राजयोग। जैसे जैसे राजयोग का अभ्यास बढ़ता जाएगा और उसकी गहराई में जाना है, ऐसा नहीं मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, वो हूं, फिर कितना बजा, अच्छा हो गया क्या टाइम, चलो खलास बैठो, लाल लाइट, मैं आत्मा हूं, 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 परवे मुझ आनंद स्वरूप शक्ति स्वरूप, इधर खुजली, फिर खुजली, फिर पैर इधर, फिर उसका मोबाइल बजा, फिर इसका मोबाइल बजा। अरे लोग मोबाइल भी बंद नहीं करते। अच्छा मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं फरिश्ता हूं, मैं वो हूं, अभी तक क्यों नहीं हुआ, गर्मी कितनी है इधर, मैं प्रेम स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं परमधाम में जा रही हूं, शिव बाबा की संतान हूं, और फिर बीच में झुटका विटका थोड़ा बीच में, और झुटका लगने के बाद सबसे पहला किसी ने देखा तो नहीं, नहीं देखा तो यू आर सेफ, हाँ चलो मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। हमारे एक डॉक्टर है, वो आती है बीच बीच में, तो एक बार अनुभव सुना रही थी। आपने पांडवन देखा है? आज जाएंगे पांडवन, वहां एक कुटिया है, तो कुटिया में छोटी कुटिया है और पीछे सोफा है, तो वो जब लोग यहां आते हैं ना मधुबन में, इसको मधुबन कहते हैं हम लोग प्यार से, तो तपस्या का नशा चढ़ता है, सुबह 2 बजे उठ के मेडिटेशन करना है। उधर तो सीधा 8 बजे उठते हैं, कभी 3 बजे उठते हैं, कभी की तो कोई ठिकाना नहीं है। इधर आते हैं तो एकदम ही नशा चढ़ जाता है सबको, 2 बजे उठ के मेडिटेशन। तो वो आई एकदम सुबह 1:30 बजे उठी, नहा के वगैरह वो कुटिया में गई, सीधा उधर मेडिटेशन करने बैठी, और मेडिटेशन करते करते जब देखा था, जो चालू किया था 2 बजे थे, पर जब आंख खुली, मतलब मेडिटेशन में ही देखा तो 5 बज रहे, बीच में क्या हुआ कुछ पता नहीं। और फिर उसे डाउट लगा कि मैं तो सो रही थी, और फिर उसने ऐसी नजर घुमाई, देखा पीछे लोग बैठे हुए सोफा पे, तो उन्होंने देखा मतलब मैं सोते हुए मेडिटेशन में, तो उसने आंख मुड़ के देखा तो माताएं बैठी थी, सभी सो रही थी, तब उसको ठीक लगा, हाँ अभी सेफ है, नाउ आई एम ओके। वो भी सो रही है, मतलब सोने का कुछ नहीं, पर कोई देखना नहीं चाहिए, नहीं तो लोग बोलेंगे तुम मेडिटेशन करते करते झुटके लगाते हो, कैसा तुम्हारा मेडिटेशन है, तुम ठीक नहीं करते हो, बैलेंस नहीं रखते हो बिल्कुल, तुमने समझा नहीं है इस ज्ञान को, बैलेंस रखा करो, थोड़ा नींद अच्छी करो, तो दे स्टार्ट गिविंग। क्योंकि क्या है, लोगों को भाषण देने में और लेक्चर में एक अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, दूसरों को ज्ञान सुनाने में, दूसरे हमको सुनाए तो हमको अच्छा नहीं लगता है, पर दूसरों को सुनाना ये बहुत, मतलब इसमें ईगो सेटिस्फेक्शन ज्यादा होता है, बहुत लगता है कि हम ठीक है, ये गलत है, इसको समझना चाहिए। तो इट इज एवरीवेयर, नॉट इन स्पिरिचुअलिटी, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन एवरी फील्ड, सो इट इज लाइक दैट। सो राजयोग एक बहुत लंबी यात्रा है, तो राजयोगी बन जाना है और इस यात्रा में अग्रसर होना है, समझना है व्हाट इज इट, व्हाई इट इज कॉल्ड राजयोग, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धम्म्य सुसुखम कर्तव्यम। भगवद गीता में भी इसका वर्णन है कि ये राजविद्या है, राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम, पवित्र को पवित्र करने वाला यह ज्ञान है, कितना ऊंचा ज्ञान है ये, उस ज्ञान को समझना है, ज्ञान की भूख, ज्ञान की प्यास, ज्ञान की पिपासा, द क्वेस्ट फॉर नॉलेज, व्हाट इज इट, व्हाट इज इट, व्हाट इज इट, ये है क्या, ये इतने सारे लोग व्हाइट कपड़े में घूम रहे क्यों, ये इतने सारी बहनें घूम रही है सब क्यों, दे डोंट हैव द डिजायर्स, दे डोंट वॉन्ट टू वर्क एंड अर्न मनी, दे डोंट वॉन्ट टू गो इन द वर्ल्ड एंड अटेन हायर पोजिशन, दे डोंट वॉन्ट टू गो एंड एंजॉय मैरिड लाइफ, वाई आर दे आर हियर सिटिंग एंड रॉटिंग, थॉट कम्स इन द माइंड, वाई, वो एक्सप्लोर करना है उसको, क्यों, क्या है ये, ये खाली संस्था है क्या है, मतलब इसमें क्या मिल रहा है ये लोगों को, एक्सप्लोर। उसके बाद में माइंडफुलनेस, अगला पॉइंट माइंडफुलनेस, सजगता, एवरी मोमेंट सजगता, बेहोशी का पल ना हो। जैसे यहां से कोई चल रहा हो, ठीक है, अगर यहां गड्ढा है, अगर वो जागृत है तो गड्ढे में कभी नहीं गिरेगा, पर अगर बेहोश है तो गिरेगा। जीवन में भी अगर हम सजग हैं तो कभी नहीं गिरेंगे। जिस दिन हम सजगता कम हो जाती है, जागरूकता कम हो जाती है, अपने आप गिरते हैं, गलती होती है, टेम्पटेशन आते हैं, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, शेक्सपियर के हैमलेट जैसी हालत होती है, टू बी और नॉट टू बी, टू बी और नॉट टू बी, टू बी और नॉट टू बी, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना, हर हमेशा पूरा जीवन हमारा इसमें डोलते रहता है। डिसीजंस है, यहां रहूं कि वहां जाऊं, जॉब करूं कि छोड़ू, ऑलवेज कंफ्यूजन, ऑलवेज इन टू माइंड्स, ऑलवेज सिटिंग ऑन द हॉर्न ऑफ डायलेमा। सो फॉर दिस रीजन क्या क्रिएट करनी है? माइंडफुलनेस, सजगता, और सजगता के लिए ज्ञान चाहिए, सजगता के लिए कंपनी चाहिए, सजगता के लिए ऐसे विजिट चाहिए बार 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 बार, कीप ऑन विजिटिंग स्पिरिचुअल प्लेसेस। सो एक अलर्टनेस रहेगी उससे। अगर यहां पर कोई डायबिटीज का लेक्चर दे और सभा में किसी को भी डायबिटीज नहीं है, कितना ध्यान से सुनेंगे? ठीक है, चालू है लेक्चर, पर अभी अभी डिटेक्ट हो गया, पहली बार शुगर चेक किया 600 और फिर डायबिटीज का लेक्चर है, एकदम ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि अभी खुद को है, पहले नहीं था। यहां पर भी अपना डायग्नोसिस करना है कि मुझे जो हो रहा है, इज इट सेक्स लस्ट, इज इट एंगर, विकारों का डायग्नोसिस करना है, इज इट लोभ, जिसको मैं कहता हूं कि मुझे तो कुछ लोभ नहीं है, पैसों का कोई मोह नहीं है, तो ये नीड है कि ग्रीड है, क्यों इतना विस्तार कर रहा हूं जबकि इतने से काम चल सकता है, क्यों इतना विस्तार कर रहा हूं, ऐसा विस्तार कर रहा हूं ड्यूटी का, जॉब का, बिजनेस का, कि जिससे जीवन ही पूरा संकट में है, ना तो सुबह का टाइम है एकांत का, ना शाम का टाइम है, भटक रहा है पूरा, पूरी दिनचर्या लौकिकता, पूरी दिनचर्या बाह्य मुक्ता, बोल बोल बोल, वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स, वेयर इज द साइलेंस? थिंक, रीथिंक, इज इट ग्रीड और नीड? हम कहते हैं हमारा तो किसी से कुछ नहीं है, मोह नहीं है, मोह नहीं है तो देन व्हाट इज दिस? यू आर कंटिन्यूअसली कॉलिंग, व्हाट इज इट देन? यहां डायग्नोसिस कौन सा करना है? विकारों का, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का। हम कहते हैं हमें तो कोई अहंकार नहीं, हम बहुत विनम्र है, पर हमारे कान में आके कोई कह दे तुमसे ज्यादा हम्बल वो दूसरा है, कौन है वो? मेरे से ज्यादा हम्बल? मैं बहुत हम्बल हूं। डायग्नोसिस ऑफ वाइसेस, जब तक डायग्नोसिस नहीं तब तक ट्रीटमेंट चालू नहीं हो सकती, और पहले ये स्वीकार करना पड़ेगा, हां आई स्टिल सफर फ्रॉम इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, आई स्टिल सफर फ्रॉम गिल्ट कॉन्शियसनेस, आई स्टिल सफर फ्रॉम दैट शेम फीलिंग। इसको पहले स्वीकार करना पड़ेगा कि मुझ में ये आदत ही है दूसरों के अवगुण निकालने की, देन यू कैन थिंक। ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं अहंकार से भरा हूं, तो फिर यात्रा चालू होगी। अभी मैं क्या करूं कि ये अहंकार खत्म तो नहीं, कम कैसे हो? एटलीस्ट इफ यू हैव दिस रियलाइजेशन, यू ऑलरेडी स्टार्टेड द जर्नी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, न्यू गोल्स। पास्ट से अगर फ्री होना है, पास्ट की अतीत के जकड़ाव से, तो क्या करना पड़ेगा? एक नया गोल, लक्ष्य अब जीवन का रखना। आप लोग यहां आ गए, अब तक का जो जीवन था वो एक तरफ, नाउ टेक कमिंग हियर एज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ। और आप यहां आए हैं, वो कोई बहन आपको लेके नहीं आई है, आप यहां आए हैं, ना यहां प्रोग्राम था, इनविटेशन था, ये था वो था, ये सब बाहर की बात है। यहां हर व्यक्ति केवल एक ही चीज से आया है, क्यों, किसके वजह से आया है? एनी आंसर्स फ्रॉम योर साइड? परमात्मा कृपा, परमात्मा की पावर एंड ऑल दैट, एनीथिंग अदर देन दैट? सेल्फ मोटिवेशन. अच्छा, मैं अपने ही मोटिवेशन से आया. एनीथिंग अदर देन दैट? क्या क्या? हु सेंट? गवर्नमेंट. ओके, सो गवर्नमेंट. ओके, द वर्ल्डली गवर्नमेंट, डिवाइन गवर्नमेंट, व्हाट एवर यू कॉल्ड. यहां आने के लिए एक चीज चाहिए. यस, जन जन से किए हुए पुण्य फल ने ढकेल ढकेल कर यहां तक पहुंचाया है. अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू कम टू दिस लैंड. यहां लोग आने के लिए टिकट बनाते हैं, पर टाइम पे उनके टिकट पे कोई दूसरा आता है जिसका कुछ भी नहीं रहता है, और वो जो आता है उसका जीवन ही बदल जाता है, पूरा बदल जाता है. यहां कई लोग 3 दिन के लिए आए थे, 3 दिन आज 30 साल हो गए यही है. दे नेवर वेंट बैक. दे आर सम पीपल, आप पांडव भवन देखा होगा, वहां पे एक दो लोग ऐसे हैं, उन्होंने ज्ञान सरोवर भी नहीं देखा अभी तक. दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग एनीवेयर. डीप सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, कहीं जाना ही नहीं है, सब मिल गया जो मिलना था. और हम बेचैन बेचैन, यहां जाऊं यहां जाऊं, इधर जाऊं इधर जाऊं, ये खाऊं वो खाऊं, इधर मिलू इससे मिलू, ये करूं वो करूं. रेस्टलेसनेस. वी हैव टू कम टू दैट पॉइंट द डीप सेटिस्फैक्शन इज देयर. डजंट मीन दैट वी स्टॉप लर्निंग, बट देयर इज अ डीप सेटिस्फैक्शन कि जो मुझे चाहिए था वो मिल गया है. अब ये सारा जो है ना, दिस इज जस्ट फॉर सेवा पर्पज. That's it. Agla, silence and solitude. Next point. जो भी आपकी दिनचर्या है उसमें अगर साइलेंस नहीं है, एकांत नहीं है, केवल लॉस्ट हो गए अपने वर्क में, अपनी सेवाओं में, then that is not spiritual thing. Spirituality is incomplete without silence and solitude. ये दो चीजें बहुत बहुत जरूरी है, मौन और एकांत. जब भी टाइम मिले, पर आप जहां काम करते वहां डायरेक्ट इस तरह का साइलेंस मिलना है, मुश्किल है. देन व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट? इंटरमिटेंट साइलेंस. जैसे वो डाइट में होता है ना, इंटरमिटेंट फास्टिंग, 12 घंटे का, 14 घंटे का, 16 घंटे का, वैसे इंटरमिटेंट साइलेंस एंड इंटरमिटेंट सॉलिट्यूड. आप जहां रहते हैं वहां कोई पार्क होगा, वहां जाओ. आप जहां रहते हैं वहां कोई नदी होगी, समंदर होगा, वहां जाओ. स्पेंड सम टाइम देयर, बी इन कंपनी विथ नेचर एंड अगेन अलोन. लोगों के साथ जाओगे भीड़ में, यू आर लॉस्ट. विदेश में लोग वीकेंड्स में कहां जाते हैं? बीच पर. पूरा के पूरा शहर जाता है. क्यों जाते हैं? एकांत के लिए. बट होल सिटी इज देयर ऑन वीकेंड्स, सो देयर इज नो साइलेंस. There is no solitude. You are lost again. अगर कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो go on the terrace. Spend time in silence. Spend time in solitude. मैं क्या कर रहा हूं? जो मेरे बारे में मेरे से ज्यादा और कोई नहीं जान सकता. पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर क्या कहता है? तुमको क्या है बताओ. वो बताता है ये है वो है वो है. सब थोड़ी ना बताता है, सब बता भी नहीं सकता, याद भी नहीं रहता. पेशेंट अपने बारे में जितना जानता है उतना कोई नहीं जान सकता. जितना हम अपने बारे में जानते हैं, हमने क्या क्या किया सब कुछ अपने जीवन में, द एक्ट्स ऑफ शेम, द एक्ट्स ऑफ गिल्ट, द सिंस, द मीनियल सिंस, द स्मॉल सिंस, द बिगर सिंस, ये सब मेरे अलावा कोई नहीं जानता. दाग लगे हैं यहां चुनरी में, इसको धोना है. और टाइम है नाउ. रियलाइजेशन, डायग्नोस करो. ये जिसे मैं प्रेम कह रहा था ना, वो प्रेम तो कभी था ही नहीं, वो वासना थी केवल. जिसे मैं प्रेम कह रहा हूं वो मोह था केवल, और मोह तो विकार के कैटेगरी में, प्रेम तो दिव्य गुण है. महाभारत में एक सीन है जहां दुर्योधन अपने पिताजी से कहता है, अगर मुझे हस्तिनापुर की राजगद्दी नहीं मिली तो मैं आत्महत्या कर लूंगा. उसके पिता धृतराष्ट्र विदुर से कहते हैं, पर मैं दुर्योधन को आत्महत्या करने से कैसे रोक सकूं, कैसे रोकूंगा, उसको ये चाहिए, गद्दी चाहिए, और ये मेरा उसके प्रति कर्तव्य है. विदुर कहता है, ये आपका दुर्योधन आपका कर्तव्य नहीं, आपका विकार है, आपका मोह है. इट इज नॉट कर्तव्य, ये मोह है। बच्चे जन्म दिए, बच्चों को बड़ा किया, अब वो अपने अपने जगह पर है, लेट देम लीव देयर लाइफ, डोंट इंटरफियर, उनको जाने दो, अगर कुछ चाहिए तो दो, डोंट इंटरफियर, अदरवाइज इट टर्न्स इनटू अटैचमेंट, और बहुत दुख देती है अटैचमेंट। वी वांट देम टू हैव बिहेव लाइक दिस, दे डोंट बिहेव, दे बिहेव इन अ डिफरेंट वे। तो ये हमको दुख वो नहीं दे रहा है बेटा या बेटी, हमको दुख हमारा अटैचमेंट दे रहा है। वर्क ऑन दैट अटैचमेंट। सो वर्क ऑन दिस पॉइंट। कितने हो गए? 16। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोफेशनल हेल्प। अगर ये रोग इतना बढ़ गया है कि वी आर नॉट गेटिंग रीड ऑफ द डिप्रेशन, ऑफ द डिप्रेसिव फीलिंग्स, सो टेक हेल्प ऑफ सम प्रोफेशनल। काउंसलर्स होते हैं ना, वो अच्छे से हेल्प कर सकते हैं हमको, पर हमको अपना अहंकार रहता है, मैं और काउंसलर के पास, हम खुद ही काउंसिलिंग करते हैं दूसरों की हम और दूसरों को गुरु बनाएगा, हम ही गुरु है यहां पर, तो हम किससे काउंसिलिंग ले। पर काउंसलर में एक चीज अच्छी होती है, वो नॉन जजमेंटल होता है। बच्चे होते हैं ना, बच्चों के काउंसलर होते हैं, तो बच्चों माँ बाप काउंसलर के पास लेके जाते हैं, वो काउंसलर बच्चे को अच्छे से जज कर सकते हैं, क्योंकि दे आर नॉन जजमेंटल। माँ बाप का पहले से ये तो ऐसा ही है, इसकी तो आदत ही है, इसको तो पढ़ाई नहीं करनी है, देयर इज अ बायस्ड ओपिनियन, दैट्स व्हाई काउंसलर, अगर सारा कुछ ट्राई कर दिया और नहीं वर्क कर रहा है तो गो टू अ काउंसलर फॉर हेल्प, कि ये जो पास्ट है, अतीत है, वरीज है, स्ट्रेस है, कैसे कुछ तो आपको टिप्स मिलेगी उनसे। हमारे हॉस्पिटल में यहां पर भी काउंसलिंग डिपार्टमेंट है एक अलग से, सो वी सेंड पीपल, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के लोगों को काउंसलिंग करूं, वी हैव सो मेनी पेशेंट्स, तो वी आई सेंड, उनके पास जाओ, वो आपका पूरा, वो बैठेंगे बहन जी आधा घंटा पौन घंटा, फिर बताएंगे क्या करना है। यहां पे विहासा आपने सुना है या किया है? वो बहुत अच्छा एक एक्टिविटी, यू कैन इंटरैक्ट लेटर ऑन, हाँ, यू कैन कॉल द पीपल, आपके उधर आएंगे, वहां पर भी वो करेंगे विहासा, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, जिसमें हम अपने आप को बहुत अच्छे से जान पाते हैं हम क्या है क्या है। सो सीक प्रोफेशनल हेल्प। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेटिट्यूड। नेक्स्ट पॉइंट ग्रेटिट्यूड, ये एक विदेश में एक जर्नल है जिसको कहते हैं ग्रेटिट्यूड जर्नल, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद। अभी यहां आए हैं, एक होता है ना, यहां आए सब कुछ किया और निकल जाना चुपचाप, पेशेंट आते हैं एडमिट होते हैं, हाँ इनका तो काम ही है सेवा करना, डॉक्टर ये वो, और निकल जाए। पर कुछ पेशेंट होते हैं जो सबको धन्यवाद करते हुए जाते हैं, दे स्प्रेड सो मच पॉजिटिविटी, उसकी जरूरी, ये नहीं कह रहे कि इन लोगों को धन्यवाद चाहिए, बट ग्रेटिट्यूड में पॉजिटिव एनर्जी है। आप, अगर मैं आपको कहूं आपका बहुत थैंक यू, आप यहां आए और आपने ये सब किया मेरे लिए, इतना कुछ किया हमारे लिए, तो आई कैन नॉट हैव नेगेटिव फीलिंग्स फॉर यू नाउ, आई कैन नॉट हैव नेगेटिव फीलिंग्स। तो ग्रेटिट्यूड में एक पॉजिटिव एनर्जी है, सो एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, सबसे पहले उस परमात्मा के लिए, अपने लौकिक माँ पिता के लिए, आप जहां रहते हैं, पति पत्नी बच्चे, उन सब के लिए ग्रेटिट्यूड, यहां तक कि उनके लिए भी जो जिन्होंने हमारे मार्ग में बहुत विघ्न उत्पन्न किए, अगर वो नहीं किए होते हम इतने स्ट्रांग नहीं बनते थे आज। सबसे ज्यादा मददगार तो वही है, जैसे रामायण का सबसे बड़ा पात्र किसको कहते हैं? मंथरा ये भी अगर उसने ये सब नहीं किया होता तो वो आए किस लिए थे? वो उधर गए ही नहीं होते। तो इट इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, सो हैव द फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। देन नेक्स्ट पॉइंट, नेचर। नेचर से जुड़ना है, प्रकृति से जुड़ना है, जितना प्रकृति से जुड़ेंगे प्रकृति की ऊर्जा हम में आएगी। झाड़ के पास जाकर बैठो, टॉक विद द ट्री, उसके पत्तों पत्तों में, ट्रीज में ऊर्जा है, माउंटेन्स में ऊर्जा है। बेयर फुट वॉक, नंगे पाओ चलना जमीन पर, एनर्जी आती है उससे, प्राणिक ऊर्जा, प्राणिक एनर्जी, यू गेन दैट प्राणिक एनर्जी विद इन यू। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, यू इनहेल प्राणा विद इन यू। तो बॉडी में जो भी ब्लॉकेजेस है, हमारे बॉडीज में चक्रास होते हैं बहुत सारे, सटल बॉडीज में, वो सब ब्लॉक्ड है, वो सब खुलते जाएंगे। मैन जिसको फिर अलग अलग भाषाओं में कुंडलिनी शक्ति एंड दिस दैट, वट एवर नेम्स यू गिव, मेरिडियंस चाइनीज में, इंडिया में चक्रास, एवरी ज्वाइंट इज अ चक्रा, हर ज्वाइंट एक चक्रा है, ये सब खुलते जाएगा एंड यू एंटर अ न्यू पैराडाइम, अ न्यू स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस वेयर देयर इज नो फटीग, जहां कोई बीमारी नहीं है, वहां कोई थकान नहीं है, वहां कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई उदासी नहीं है, कोई निगेटिविटी नहीं है, कोई इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, एंड यू आर इन इटर्नल हैप्पीनेस ऑल द टाइम। जहां पर नींद का भयंकर जो प्रकोप रहता है ना, 8-8 घंटे सोते हैं फिर भी रेस्ट नहीं, फ्रेशनेस नहीं है, वो सारा क्यू है, बिकॉज ऑफ द लेस प्राणा, प्रकृति में प्राण ऊर्जा है। आप यहां, आपको इतना अच्छा क्यों लग रहा है, क्योंकि प्रकृति के बीचों बीच है ये, अरावली पर्वतों के बीच, यहां एक अलग ही वातावरण है प्रकृति का, तो कनेक्ट विथ नेचर। उसके बाद में ट्रिगर्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ट्रिगर्स, जो जो ट्रिगर्स है जो हमें पास की यादें दिलाता है वो सबको हटा दो। घर में अगर ऐसी चीजें रखी हुई है कि वो देखते ही उस व्यक्ति की याद आती है, सब वैसी चीजें सब हटा दो, वस्तु, जस्ट रिमूव ऑल दोस थिंग्स जो हमें पास से अननेसेसरी जोड़ती है और याद दिलाती है, क्योंकि वो याद आती है दुखी हो जाता है मन, और दुखी मन कभी अध्यात्म में उन्नति नहीं कर सकता। ट्रिगर्स, ट्रिगर्स अर्थात फिलिप्स, ट्रिगर्स अर्थात उत्तेजक, वो सबको हटाते जाओ, जो भी आपको लगता है ट्रिगर्स। नेक्स्ट, रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप में एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करनी है, रिलेशनशिप्स में क्या करना है, हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करनी है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की एक बुक है, उसका नाम हम भूल रहे हैं, हाँ, सो द लास्ट बुक इंग्लिश में, लास्ट बुक नॉवेल, गीतांजलि तो अलग है, तो उसमें एक स्त्री है एक पुरुष है, स्त्री पुरुष से प्रेम करती है, पुरुष स्त्री से प्रेम करता है, वो जो स्त्री है बहुत अमीर है और जो पुरुष है वो गरीब है, ठीक है, तो वो दोनों ही शादी करना चाहते हैं। शोशीर कविता, दैट्स द नेम ऑफ द बुक, बंगाली, शोशीर कविता द लास्ट पोएम इंग्लिश। तो वो जो स्त्री है ना, एक शर्त रखती है कि जब मैं तुमसे शादी करूंगी, ये जो सामने महल है ना, तुम वहां रहना, मैं यहां रहूंगी। उसका बहुत बड़ा बंगला है, घर है, सब है, बीच में एक झील है, तो कहती है शादी करोगे, मैं तुम्ही से शादी करूंगी, पर तुम उधर रहना, मैं इधर रहूंगी, और हम रोज मिलेंगे, पर कैसे मिलेंगे, तुम इधर से झील में जा रहे हो नाव में, मैं इधर से जा रही हूं, हाय हेलो ओम शांति, पर हम एक साथ नहीं रहेंगे। वो कहता है व्हाट, तुम मुझसे प्यार करती हो ना, वो कहती यस, तो तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, यस, तो तुम शादी करोगे तो मेरे साथ नहीं रहोगी, वो कहती नो, वो कहती देन व्हाट इज द पॉइंट। और वो यहां भी करती है, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, वो बहन कहती हो वो स्त्री, तो मैं और किसी से भी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा केवल तुमसे प्यार है बस। इट इज स्ट्रेंज, वो कहती है अगर हम साथ साथ रहने लगे तो हमारा जो संबंध है उसमें जो फ्रेशनेस है और जो प्यूरिटी है, आई डोंट वॉन्ट इट टू गेट लॉस्ट। जो प्लेटोनिक लव है, प्लेटोनिक लव इंग्लिश में एक शब्द है, प्लेटोनिक लव, प्लेटोनिक एंड फिजिकल, एक होता है शरीर का, एक होता है शरीर के परे जो प्रेम होता है जिसे प्लेटोनिक प्रेम कहते हैं, प्लेटोनिक लव है, वो चला जाएगा, बट आई विल स्टे। इसीलिए तुम रहोगे उधर हम इधर, तुम उधर हम इधर, बीच में झील, इट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग। जैसे ही आप किसी व्यक्ति के साथ रहते हो और उसके बहुत ज्यादा नजदीक जाने लगते हो तो झगड़े चालू हो जाते, फैमिलियरिटी बिगेट्स हेट्रेट हॉस्टिलिटी। इसके लिए सबके साथ रहो, सबके बीच रहो, पर बीच बीच में क्या हो, बीच में झील, तुम उधर हम इधर, रह रहे एक ही घर में पर तुम उधर हम इधर, बीच में झील। डिस्टेंस होना चाहिए रिलेशनशिप में। ज्यादा ही नजदीक आ गए, बहुत ज्यादा फैमिलिटी, बहुत ही दिन में चार बार बात कर रहे, कॉल, वीडियो कॉल, मैसेजेस, ये वो, तो गड़बड़ चालू हो जाती है। दूर करो, थोड़ा सा दूर, गिव स्पेस, हर एक को जगह चाहिए टू ब्रीद, टू ब्रीद। बच्चों को भी जगह चाहिए टू ब्रीद। यूअर चिल्ड्रेन आर नॉट यूअर चिल्ड्रेन, दे आर फ्रॉम यू बट नॉट फॉर यू। ऐसी कविता है खलील गिब्रान की, तुम्हारे बच्चे है, वो तुमसे है पर तुम्हारे लिए नहीं है, वो तुमसे है बट दे आर नॉट फॉर यू, दे आर फ्रॉम यू। गिव देम ऑल्सो स्पेस, साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग। हो गए 21 कि बाकी है एक हद? ठीक है, तो सभी स्थिर बैठेंगे, लास्ट 5 मिनट्स। शरीर को हिलाना नहीं है, आंखें बंद, जीवन की तरफ देखेंगे। उस घर को देखेंगे जहां हम रहते हैं, घर के लोग, पति पत्नी, बच्चे, घर का एक एक कमरा, उस ऑफिस को देखेंगे जहां हम काम करते हैं, वहां के लोग, उस रास्तों को देखेंगे, वो ट्रैफिक, वो रोड्स, वो व्हीकल्स जिसमें हम रोज ट्रैवल करते हैं, अपनी वहां की दिनचर्या आंखों के सामने लाएंगे। कितने बजे उठते हैं, उठने के बाद क्या करते हैं, पहले तक का बचपन से लेकर अब तक का सारा जीवन एक तरफ, और अब यहां आना, यहां के पिछले 2-3 दिन, चेतना में कौन सा परिवर्तन आया है? दौड़ रहा था, भाग रहा था, रुका हुआ, क्या करता है? electricity, the divine spark of light. A bodiless being, a being of light, a sentient point of energy. सृष्टि चक्र का परिचय, स्वयं के अस्तित्व का परिचय, परमात्म परिचय, कर्मों की गुह्य गति का परिचय, अब तक जीवन उस परमात्मा के बिना चल रहा था, अचानक वो जीवन में आया है। एक नवीन दृष्टिकोण, एक नया उजाला, एक नई सुबह, नई शाम, नवीन जीवन, नई खोज, नई इच्छाएं, नई आकांक्षाएं, नवीन लक्ष्य, नव प्रकाश। हृदय धन्यवाद से भर गया है। निर्विकार चेतना, आंखें खोलेंगे, और अब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, बिना आवाज किए, संपूर्ण मौन। और धीरे धीरे अपने ही जगह पर गोल घूमेंगे, सबको देखते हुए, बहुत धीरे धीरे, स्लोली मूव, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और जब भी दूसरों को देखो, सोचो ये आत्माएं हैं, और एक बार ये दिव्य आत्मा का संगठन है, आपस में एक दूसरे के हाथ पकड़ेंगे, इस तरह हमारी तरफ देखते हुए, हमारी तरफ देखते हुए, लाइक दिस, जस्ट होल्ड द हैंड्स, क्लोज द आईज एंड फील द कलेक्टिव एनर्जी। मेरे पूरे शरीर में एक दिव्य ऊर्जा भर गई है। आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी। समर्पण करता हूं स्वयं का। अब एक नवीन जीवन की शुरुआत है, पुराना सब कुछ समाप्त। आंखें खोलेंगे और सामने देखेंगे उस ज्योतिर्मयी परमात्मा को, उसकी दिव्य किरणें मुझ आत्मा में आ रही, नव ऊर्जा, नव प्रकाश, नव चेतना। ओम शांति। सभी बैठ जाएंगे।
ओम शांति। डॉक्टर सचिन भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने स्पष्ट तरीके से अपना टॉपिक को हमारे समक्ष रखा। थैंक यू भाई जी।